हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज एकादशी के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत के कथापान का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में ही इस बात की पुष्टि हुई है। हाँ, ये थोड़ा ये ठीक है साहब, कि द्वादशी और एकादशी के दिन जो श्रीमद् भागवत का कथापान करे, विशेष रूप से उसका शुद्धिकरण अनिवार्य रूप से होता है। तो इसलिए संयोगवश इस कथा सत्र में 4 दिनों में एक दिन एकादशी और एक दिन द्वादशी पड़ेगी, और रविवार के दिन विशेष रूप से ध्रुव महाराज के कथा प्रसंग के अंत में वर्णन किया गया है कि इस कथा को एकादशी द्वादशी तथा रविवार के दिन जो श्रवण कीर्तन करेगा उसको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो अनायास ही भगवान की असीम अनुकंपावश हम सभी को श्रीमद् भागवत के वर्णन के अनुसार ही कथा का लाभ प्राप्त हो रहा है, और ये श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों के माध्यम से बहुत स्पष्ट कर रहे हैं। तो कल हमने कथा के विषय में ध्रुव महाराज के चरित्र का वर्णन आरंभ किया। ध्रुव महाराज बचपन के कोई भक्त नहीं थे, नाना प्रकार की इच्छाएं मन में उमड़ रही थीं, और इच्छाओं की दावाग्नि इस तरह बढ़ चली गई कि क्रोध में परिवर्तित हो गई, और क्रोधावेश में ध्रुव महाराज अब भागे भागे अपनी मां सुनीति के निकट आ रहे हैं। सुनीति के निकट आने पर ध्रुव महाराज के साथ क्या आदान प्रदान होता है, इसके विषय में हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सोत्सृज्य धैर्यम विललाप शोक दावाग्निना दावलते व बाला वक्त्यम सपत्न्या स्मरति सरोज श्रिया दृशा बाष्पकलाम उवाह। सुनीति दीर्घकाल से अपने विषय में चिंतन करती थी कि कैसे मेरे पति मेरी उपेक्षा करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के उपेक्षा का पात्र बनता है, जब हम अपने हृदय के भीतर में, हृदय के अंतःकरण में किसी इस जगत के व्यक्ति के स्नेह के पात्र बनने के अति अभिलाषी होते हैं, और जितनी अपने मन में अभिलाषा होती है उनके स्नेह को प्राप्त करने की, उतना ही वो व्यक्ति हमारी उपेक्षा कर दे, अवहेलना कर दे, तो इस उपेक्षा के वशीभूत हमारा चित्त बहुत बुरी तरह से दहकता है। और जब कोई हमारी उपेक्षा करके उतनी ही मात्रा में अन्य किसी के प्रति प्रेम व्यक्त करे, तो फिर तो हृदय की दावाग्नि की कोई सीमा ही नहीं। तो यहां पर ध्रुव महाराज की मां सुनीति को महाराज उत्तानपाद निरंतर उपेक्षा करते थे और सुरुचि के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते थे। इसके परिणाम स्वरूप सुनीति बड़ी दुखी रहती थी। तो इसलिए वर्णन आता है कि महाराज उत्तानपाद के उपेक्षा रूपी तेजस्वी किरणों ने सुनीति के चित्त भावनाओं के समुद्र के भीतर इतना दाह उत्पन्न किया कि उसके परिणाम स्वरूप शोक रूपी श्याम मेघ मंडल उनके हृदय में परिवर्तित हुए और जब ये शोक रूपी श्याम मेघमंडल सुरुचि के दुरुक्ति रूपी विशाल पर्वत समूह से टकराए तब उसका परिणाम यह हुआ कि उनके नेत्रों से तप्त अश्रुधारा संचारित होने लगे और ऐसी अवस्था में सुनीति अपने पुत्र ध्रुव महाराज को आलिंगन करते हुए उसको सांत्वना देने का प्रयास कर रही है। सोत्सृज्य धैर्यम विललाप शोक। तो अब तक धीरज अपने हृदय के भीतर बांध के रखी थी क्योंकि कभी कभी कोई हमारी उपेक्षा करता भी है तो मन में एक शंका रह जाती है, हो सकता है इस व्यक्ति के चित्त में कोई दूसरी भावना हो, ऐसा नहीं कि वो हमसे घृणा करता है, हो सकता है प्रेम करता है लेकिन प्रेम को ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाता, तो एक आशा की किरण मन में होती है। लेकिन जब किसी कार्य से, वाणी से या अन्य किसी घटना से यह प्रमाणित हो जाता है कि वास्तव में इस व्यक्ति के हृदय में हमारे प्रति नकारात्मक भावना है, ये हमसे घृणा ही करता है, और ये जब सिद्ध हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है, तो संचित धैर्य नष्ट विनष्ट हो जाता है। तो इसलिए स उत्सृज्य धैर्यम विललाप शोक। विललाप शोक अर्थात वो धीरज समाप्त हुआ और नाना प्रकार से शोक संताप करने लगी बेचारी सुनीति। और दावाग्नि ना दाव लतेव बाला, जिस प्रकार किसी दावाग्नि के वशीभूत कोई कोमल लता पूरी तरह झुलसकर नष्ट हो जाए, ऐसे सुनीति प्रतीत हो रही थी। इस भौतिक जगत में कोई भौतिक व्यक्ति के प्रति संबंध स्थापित करके उन्हें ही अपने स्नेह का पात्र यदि हम बनाएंगे तो इस तरह का परिणाम अनिवार्य है। काल के प्रभाव से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में इस तरह की अनुभूति करेगा ही। इसलिए ध्रुव महाराज की संपूर्ण प्रसंग में प्रमुखतम संदेश ये ध्वनित हो रहा है कि यदि हम लोगों को अपने जीवन में संबंध स्थापित करना ही है तो प्रमुख रूप से भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर संबंध स्थापित करें और उस आधारशिला को लेकर अपने जीवन के अन्य सभी संबंधों को स्थापित करें, अन्यथा ये सारे संबंध अंततोगत्वा नेत्रों से अश्रुधारा के रूप में ही परिवर्तित होंगी। वो एक ही सनातन संबंध है जो हमारे नित्य सुख का कारण बनेगा। अन्य सभी संबंध येन केन प्रकारेण दुख में ही परिवर्तित होगा। दावाग्निना दाव लतेव बाला। और अब सुनीति ध्रुव महाराज को देख रही है कि उसके नन्हे से शिशु की क्या दुर्व्यवस्था हो गई। वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोजा। तो निरंतर वो अपने सपत्नी अर्थात सुरुचि के उक्तों दुरुक्तियों को स्मरण करने लगी। तो न केवल हम अपने जीवन में किसी घटना से प्रभावित होते हैं लेकिन उस दुर्घटना का स्मरण करके और अधिक संतप्त होते हैं। तो भगवान ने हमको मन में स्मरण करने की शक्ति दी है और इस स्मरण शक्ति को सकारात्मक रूप से प्रयोग करना चाहिए। घटनाएं होती चली जाती हैं लेकिन यदि हम उन दुर्घटनाओं का स्मरण करेंगे तो कोटि कोटि अधिक मात्रा में हम दुख की अनुभूति करेंगे। इसलिए स्मरण शक्ति का प्रयोग सकारात्मक रूप से कृष्ण के स्मरण में प्रयोग करना है, अन्यथा हम परेशान होंगे। तो वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोजा, स्त्रिया दृशा बाष्प कलाम उवाह। और झरझर नेत्रों से अश्रुधारा बहाती हुई सुनीति अब ध्रुव महाराज से वाक्य कहने लगी। तो उपेक्षा की बड़ी शक्ति होती है। एक बार एक बच्चे ने स्कूल में एग्जाम दिया और उसे लग रहा था कि पता नहीं एग्जाम में क्या होगा, और उनके पिता उसके प्रति बहुत ही कठोर रवैया रखते थे। तो रिजल्ट का दिन आया और पिताजी रिजल्ट देखने गए और बच्चे के मन में बड़ी आतुरता थी कि मेरा क्या होगा एग्जाम में। एग्जाम का रिजल्ट देखकर पिता लौट के आए। घर पर आने के पश्चात शांति से अपना बैग रखा। पुत्र उनकी ओर देख रहा था कि पिता कुछ संकेत करेंगे कि क्या हुआ, लेकिन बिना संकेत किए वो बैग रखकर फिर बाहर निकल गए। उनके मन में क्या विचार उमड़ रहे थे, वो क्या कहना चाह रहे थे, कोई संकेत नहीं किए। मुख पर मलानी के चिन्ह दिख रहे थे और वो चुपचाप बाहर निकल गए। तो पुत्र को लगा कि शायद मैं फेल हो गया हूं और हमारे पिता हमसे बड़े रुष्ट हैं और इसलिए अपना क्रोध इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह विचार की एक चिंगारी उनके मन में क्या जागृत हुई और अधिक अपने मन में स्मरण करने लगे, विचार करने लगे नाना प्रकार के दूसरे कार्यकलाप जो उनके जीवन में अपने पिता के साथ हुए थे। और देखते ही देखते वह चिंगारी एक दावाग्नि में परिवर्तित हो गई और उनके संपूर्ण मन पर ऐसी हावी हो गई कि उसको लगा कि अब मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार होगा, मेरी पिटाई होगी, पता नहीं क्या होगा। और इस तरह चिंता बढ़ती चली गई और वो इतना परेशान हो गया कि बच्चा आत्महत्या कर लिया। ये सत्य घटना है और कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। और पिताजी लौट के आए और उनके हाथ में एक थैली थी और वो अपने बच्चे के लिए गिफ्ट लेके आए थे क्योंकि बच्चा डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ था। तो वास्तविकता कुछ थी, पिता के मन में भावना कुछ थी और पुत्र ने और कोई भावना अपने मन में अनुवाद कर लिया। तो इसलिए जब किसी व्यक्ति की हम उपेक्षा नहीं भी करें लेकिन फिर भी उसे लगे कि हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उसका भी परिणाम बड़ा भयंकर घातक सिद्ध हो सकता है। तो यहां पर वर्णन आ रहा है, वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोजा श्रिया दृशा। अर्थात जिस प्रकार की भावनाएं हमारे मन में चलती हैं उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है। और यहां तक कि व्यक्ति इस जीवन काल में एक श्वास और लेने की आशा खो बैठता है। जैसे एक गर्भवती महिला थी, गर्भवती अवस्था में वो टीवी का प्रोग्राम निरंतर देखती थी और वो टीवी का प्रोग्राम उसको इतना भाता था कि वो बिना देखे कभी सोती नहीं थी। पुत्र के जन्म के पश्चात कुछ समय के पश्चात देखा गया कि वो बच्चा निरंतर रोता रहता है, निरंतर रोता रहता है और केवल कुछ समय वो शांत बैठ पाता है। तो डॉक्टरों ने पता लगाया और जब जांच पड़ताल की तो पता पड़ा कि वो बच्चा तभी चुप बैठता था जब वो टीवी का प्रोग्राम के सामने उसको बिठाते थे। अर्थात मां के गर्भ में, गर्भस्थ अवस्था में वो मां ने जो नाना प्रकार की भावनाएं अपने मन में धारण की उसका प्रभाव पुत्र पर हो गया। तो इस तरह मन बड़ा ही सूक्ष्म है और मन में जिस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होंगी उसके अनुरूप हमारे शरीर की इंद्रियों की क्रियाएं संचालित होंगी। इसलिए यहां पर ध्रुव महाराज और उनकी मां दोनों मानसिक रूप से चिंतित हैं, संतप्त हैं, पूर्ण रूपेण हताश हो चुके हैं और आशा खो चुके हैं। और ऐसी अवस्था में आगे वर्णन आता है, दीर्घम श्वसंती व्रजिनस्य पारम अपश्यति बालकम आह बाला। तो सुनीति दीर्घ श्वास भरने लगी। दीर्घम श्वसंती व्रजिनस्य पारम, क्यों दीर्घ श्वास भर रही थी? व्रजिनस्य पारम, क्योंकि वो इस समस्या का कोई समाधान दूर दूर तक नहीं देख रही थी। इस समुद्र सागर, इस विशाल समस्या के सागर का कोई तट उसको दिख नहीं रहा था, इसलिए व्रजिनस्य पारम अपश्यति। कभी कभी जीवन में समस्याएं इतनी महान शक्तिशाली होती हैं कि अपने बुद्धि का मस्तिष्क का शत प्रतिशत प्रयोग करके भी हम उसके समाधान के विषय में चिंतन नहीं कर पाते। और जब अपने बुद्धि से समाधान प्रकट नहीं होता तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। सुनीति की यही अवस्था थी। अपश्यति बालकम आह बाला। एक बार एक व्यक्ति नदी पार कर रहा था, नौका में बैठे थे और उनके साथ अन्य उनके सारे मित्रगण थे। तो इस सज्जन ने बगल में बैठे एक रिष्ट पुष्ट सुडौल शक्तिशाली व्यक्ति से समय पूछा, पूछा भैया टाइम क्या है। तो बड़े पहलवान थे, उन्होंने अपनी शक्तिशाली भुजा उठाई और सीधा मुष्टि प्रहार उनके सर पर किया, जोर से धड़ाम करके एक दे मारा। सर पर जोर से प्रहार हुआ, ये बेचारे वहीं ठार नीचे गिर गए और उठ के पूछा कि महाशय ये क्या था, मैंने आपको समय पूछा, ये क्या कर दिया आपने। तो पहलवान ने कहा कि ये मेरे समय बताने की शैली है, एक बजा है इसलिए एक जोर से धराम मारा। तो बगल में बाकी सज्जन लोग बैठे थे, वो इसको उकसाने लगे, प्रेरित करने लगे, देख तेरे साथ अन्याय हुआ है, तुम भी दिखा दो कि तुम कौन हो, ये क्या विचार करता है कि आपको प्रहार करके चुप बैठ जाएगा। तो सज्जन कहने लगे, मैं तो भगवान को धन्यवाद देता हूं कि एक घंटा पहले मैं समय नहीं पूछा, एक घंटा पहले समय पूछता तो क्या होता, एक दर्जन मिलता। तो कई बार जीवन में समस्याएं इतनी विशाल तरह से हमारे समक्ष खड़ी हो जाती हैं और इतना भयंकर मुष्टि प्रहार होता है, हमारी भावनाएं पूरी तरह विदीर्ण हो जाती हैं, समझ में नहीं आता समस्या का समाधान कैसे हो। तो सुनी थी ऐसी अवस्था में थी, अपश्यति बालकम आह वाला, और कहने लगी अपने पुत्र को, क्या कहने लगी, मां मंगलम तात परेशु मम स्था, हे पुत्र हे ध्रुव, मां अमंगलम तात, सुरुचि ने आपके प्रति दुर्व्यवहार किया है, आपका कर्तव्य बनता है कि उसके प्रति आप दुर्व्यवहार न करो। चित्त के भीतर जो प्रतिकार की भावना स्वाभाविक रूप से उमड़ रही हो, जो चित्त में प्रतिकार की अग्नि दहक रही है, उसका तुरंत क्षमा से शमन कर दो। मां अमंगलम तात परेशु। तो कई बार जब हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है तो हम भी उस व्यक्ति की अमंगल कामना करने लगते हैं। तो यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति सुनीते के मुखारविंद से हम सुन रहे हैं, मां अमंगलम तात परेशु मम स्था। कई बार नाना प्रकार के कारणों के परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन में दुर्भाग्य का उदय देखते हैं और विचार करते हैं कि किस तरह हम अपने जीवन में इससे बच सकें, किस तरह यह समस्या का समाधान हो। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति गरीबी से बहुत संतरस्त था। सामान्य रूप से लोग अपने जीवन में आर्थिक विकास का बहुत प्रयास करते हैं और प्रचुर प्रयास करने के बाद भी जब आर्थिक विकास नहीं होता तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है और संतप्त हो जाते हैं, रात की निद्रा भंग हो जाती है। तो बेचारा एक ज्योतिषी के पास गए और कहे कि भैया क्या बात है, धन प्राप्त करने की बड़ी इच्छा है लेकिन लक्ष्मी जी अपनी कृपा कटाक्ष हम पर नहीं बरसा रही। तो ज्योतिषी कहने लगे, आपकी पत्रिका को देखकर मैं समझ रहा हूं कि 40 वर्ष की आयु तक गरीबी के कारण तुम दुखी रहोगे। तो सज्जन के मन में आशा की किरण जाग गई। तो बोले, ज्योतिषी जी उसके बाद क्या होगा। ज्योतिषी ने कहा, उसके बाद गरीबी की आदत लग जाएगी और दुख कम हो जाएगा। तो कई बार हमको लगता है कि समस्या जब आए तुरंत उसका समाधान होना चाहिए। आज समस्या आए तो बस कल सब ठीक हो जाना चाहिए। हम लोग सभी अपने मन के अंतकरण में मुक्ति कामी हैं, किसी समस्या को आता हुआ देखकर तुरंत भागना चाहते हैं। तो यहां पर समस्या आन खड़ी हुई है और स्वाभाविक रूप से कोई व्यक्ति प्रतिकार करेगा, लेकिन यहां कह रही है मां मंगलम तात परेशु, आप अपने सौतेली मां के प्रति कोई अमंगल कामना मत करो। क्यों? भुंगते जनो यत पर दुखतस्तत, जो हम दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार करेंगे वो ही हमारे जीवन में अन्य रूप से परिणित होकर हमको कष्ट देगा। ये कर्म के सिद्धांत है बेटा, इसको समझने का प्रयास करो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कर्म के सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, सामान्य व्यक्ति उनको समझता नहीं। टेनिस की दुनिया में एक प्लेयर थे आर्थर एश, बड़े प्रसिद्ध थे, विंबलडन फाइनल्स में आकर वो जीत भी गए थे और विंबलडन चैंपियन हो गए थे। कुछ वर्षों के पश्चात डॉक्टरों ने उनको कैंसर घोषित किया, तो कुछ न्यूज़पेपर पत्रकार आकर, अखबार के पत्रकार आकर उनसे प्रश्न पूछने लगे कि आप विश्व प्रसिद्ध टेनिस के खिलाड़ी हो, विंबलडन चैंपियन भी हो चुके हो, फिर भी आपके जीवन में ऐसी दुर्घटना घटी, आपके मन में क्या भावना उठ रही है? तो बड़ा सटीक उत्तर उन्होंने दिया जो आपके साथ मैं कहना चाहता हूं। वैसे कोई बहुत बड़े ऋषि संत महात्मा सुत गोस्वामी शौनक जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों उन्होंने अपने साक्षात्कार इस तरह व्यक्त किए इसलिए बता रहा हूं। तो कहने लगे कि पूरे विश्व भर में करोड़ों बच्चे टेनिस खेलने की अभिलाषा रखते हैं, उन करोड़ों बच्चों में से कुछ लाख बच्चों को टेनिस खेलने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो उन 10 लाख बच्चों में लगभग केवल 1 लाख बच्चे ठीक प्रकार से टेनिस में प्रशिक्षित हो पाते हैं, और वो 1 लाख व्यक्तियों में लगभग कुछ हजार लोग ग्रैंड स्लैम इवेंट में भाग ले पाते हैं, उसमें से लगभग करीब 100 लोग गिन चुनकर विंबलडन में भाग ले पाते हैं, उसमें से लगभग करीब 4 लोग अंतिम राउंड में आते हैं, उसमें से 2 लोग फाइनल में आते हैं, उसमें से 1 विजयी होता है, और जिस दिन मैं अपने मस्तक के ऊपर विंबलडन ट्रॉफी को धारण करके गर्व से मेरा छाती फूल रहा था, उस दिन मैंने भगवान को यह नहीं पूछा कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो क्योंकि उस दिन भगवान ने मेरे जीवन में सौभाग्य का उदय किया, मैंने उनसे प्रश्न नहीं किया, तो आज जब दुर्भाग्य का उदय हो रहा है तो मैं ये प्रश्न कैसे पूछ सकता हूं। तो इस तरह यहां पर वो कह रही है भुंगते जनो यत पर दुखतस्तत, यदि हम अपने जीवन में कोई दुर्भाग्य का अनुभव करते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होता है और उसके विषय में चिंतन करना चाहिए। प्रतिकार करने से कोई लाभ नहीं, इस तरह सुनीति कह रही है। आगे कहती है सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। सुनीति बहुत विनम्र है और वो कहती है कि आपकी सौतेली मां सुरुचि ने जो उक्तियां कही हैं वो वास्तव में सत्य है। सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में, जो मेरे विषय में उन्होंने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है वास्तव में वो सत्य से पूरित है। क्यों? क्योंकि यत दुर्भगाया उदरे गृहीत, क्योंकि हे ध्रुव आपका जन्म ही बड़ा दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि मुझसे आपने संबंध रखा। स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते माम, और मैंने ही स्तनपान करके आपको इतना बड़ा किया। स्तन्येन वृद्धश्च, तो इसलिए अब तक का आपका संबंध मेरे साथ था, लेकिन आप जानते नहीं कि आपके पिता महाराज उत्तानपाद विलज्जते भार्या, वो मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करने के लिए भी निरंतर लज्जित रहते हैं। भार्ये तिवा वोढुम इदशपतिर्माम, राजा हैं, चक्रवर्ती नरेश हैं, लेकिन उनका हृदय स्नेह से केवल सुरुचि के प्रति आकृष्ट होता है और मुझे भार्या क्या दासी के रूप में भी स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं। तो इसलिए आपके साथ जो दुर्घटना घटी है वो स्वाभाविक है। तो ये बहुत ही सुंदर उक्तियां सुनीति कह रही हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, सज्जन पुरुष हमेशा अपने ही कर्म को दोष देते हैं और विचार करते हैं कि अपने ही दुष्कर्म नाना प्रकार के दुखों में परिवर्तित हो रहे हैं। महाविपत्तौ संसारे यस्मरेत मधुसूदन विपत्तौ तस्य संपत्ति, वर्णन आ रहा है जो महान विपत्ति में मधुसूदन भगवान को स्मरण करे, यह स्मरेत मधुसूदन, आपके जीवन में कोई महान संपत्ति आन पड़ी और उस महा विपत्ति में आपने मधुसूदन का स्मरण किया, विपत्तौ तस्य संपत्ति, वो विपत्ति संपत्ति में परिवर्तित हो जाती है। तो हमें चाहिए कि ऐसे विपदा में किस तरह कार्यशील होना है इसका चिंतन करना है। और यहां सुनीति ध्रुव महाराज को इसके विषय में ज्ञान देने वाली है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग यहां पर आरंभ होने वाला है, जब सुनीति ध्रुव महाराज को बहुत ही शिष्ट उक्तियों से सांत्वना देने का प्रयास कर रही है। सुरुचि और सुनीति के बीच में संबंध ठीक नहीं थे और यह परिस्थिति परिपक्व थी कि सुनीति इस कलह को और अधिक वर्धन करे। सुनीति अपने वाणी से, वचन से ध्रुव महाराज के चित्त के भीतर क्रोध और प्रतिकार की भावना को और अधिक प्रज्वलित कर सकती थी। तो प्रत्येक नेता का, मां का, पिता का, जो नेता के पद पर हो, उत्तरदायित्व बनता है कि अपने अधीनस्थों के चित्त की भावनाओं को किस तरह संभाले। जब कोई हमारे समक्ष ऐसी समस्या लेके आए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक शब्द माप तोल कर, गिन गिन कर, चुन चुन कर हमको बोलना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हम शब्दों का प्रयोग करेंगे या तो समस्या और बढ़ेगी या समस्या का समाधान सिद्ध होगा। तो सुनीति अपने पारदर्शी चरित्र के माध्यम से एक श्रेष्ठतम आध्यात्मिक नेता का एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रदर्शित कर रही है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कहीं पर इस प्रसंग में सुनीति महाभागवत है ऐसा वर्णन नहीं आ रहा। यह भी वर्णन नहीं आ रहा कि सुनीति आध्यात्मिक दृष्टि से अपने पुत्र ध्रुव से अधिक प्रगतिशील थी। सुनीति एक सामान्य राजमहल में महिला थी जो नाना प्रकार के कार्यों में लगी हुई थी। आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी क्या योग्यताएं थी इसका वर्णन नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जो कुछ ज्ञान उनको प्राप्त था उस ज्ञान को उन्होंने श्रेष्ठतम चरित्र के समाविष्ट के साथ अपने पुत्र ध्रुव के समक्ष प्रस्तुत किया। तो जब सीमित ज्ञान श्रेष्ठ चरित्र के साथ हम अपने जीवन में उतारें तो वो अधिक लाभ दे सकता है, न कि कोटि कोटि खजाना भर का ज्ञान अर्जित कर लें लेकिन चरित्र हर प्रकार से शून्य हो। लज्जा शून्य चरित्र और श्रेष्ठ ज्ञान, ये दोनों का मेल हमारे जीवन में कभी भाग्य का उदय नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर सुनीति का चरित्र बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो कह रही है आतिष्ठतत्तात विमत्सरस्त्वम् उक्तम समात्रा पियदव्यलीकम्। वो कह रही है बेटे आतिष्ठ आओ, जरा बैठो यहां पर, ध्यान से विचार करो। आप तुरंत अपनी माता के द्वारा कहे गए उक्तियों के आधार पर कार्य करना आरंभ करो। आतिष्ठ जस्ट एग्जीक्यूट। विमत्सरस्त्वम बिना मात्सर्य के, बिना द्वेष के। उक्तम समात्रापि यद अव्यलीकम, क्योंकि आपकी मां ने जो वचन कहे हैं वो वास्तविक हैं, दे आर फैक्चुअल अव्यलीकम। तो ये सज्जन पुरुष के लक्षण होते हैं कि वो दुर्घटना में भी, नाना प्रकार के समस्या में भी क्या सकारात्मक बात हो वो खोज लेते हैं, वो कचड़े कूड़े करकट में भी स्वर्ण को उठा लेते हैं। ये महान संतों का एक बहुत ही श्रेष्ठ चरित्र होता है। दे कैन पिक गोल्ड इवन फ्रॉम स्टूल। तो यहां देखिए सुरुचि ने कितने कर्कश वाणी से अपने सौतेले पुत्र ध्रुव का इस तरह भर्त्सना की, लेकिन उसमें से भी, उस वाणी से भी सुनीति कह रही कि वास्तव में उन्होंने जो भगवान नारायण की पूजा वाली बात कही वो सही है, वो उचित है। तो कहती है आराधनायाधोक्षज पाद पद्मम यदि छसे ध्यासनम उत्तमो यथा। यदि आप उत्तम के साथ एक ही आसन पर बैठना चाहते हो तो आपकी माता ने जो वाणी का प्रयोग किया है तुरंत उसके आधार पर आप कार्य करो, अर्थात भगवान नारायण की सेवा पूजा में आप लग जाओ। श्री प्रभुपाद जी वर्णन करते थे कि कोई हरे कृष्ण आंदोलन के प्रति नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करे तो हमारे चित्त में हीन भावना जागृत नहीं होनी चाहिए। जैसे भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर के समक्ष कुछ शिष्य लोग न्यूज़पेपर आर्टिकल लेके आए और उसमें गौड़ियमठ की निंदा हुई थी, तो सरस्वती ठाकुर ने कहा कि केवल इस आर्टिकल में आप गिनो कि कितने बार कृष्ण के शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उन्होंने गिनती की तो सरस्वती ठाकुर ने कहा इतने बार श्रोतागणों ने कीर्तन किया है कृष्ण के नाम का। एक बार दो आर्टिकल छपे थे, एक में गौड़ियमठ की स्तुति हुई थी, दूसरे में गौड़ियमठ की निंदा हुई थी। सरस्वती ठाकुर ने कहा कि गिनती करो किसमें कृष्ण का नाम अधिक बार आया है। तो जिस आर्टिकल में निंदा हुई थी उसमें अधिक कृष्ण का वर्णन था। तो सरस्वती ठाकुर ने कहा यह ज्यादा श्रेष्ठ आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे सापेक्ष धारणाएं हैं, कृष्ण का नाम वर्णन हुआ है यह महान है। 1971-72 की बात है, जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन भारत भर में प्रचार हो रहा था, श्री प्रभुपाद के शिष्यगण बहुत प्रयास करके कृष्ण भक्ति का प्रचार भारत में कर रहे थे। तो उस समय एक फिल्म बनी हरे कृष्ण हरे राम, और इसके विषय में और अधिक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, आप लोग इसके विषय में भरी भांति जानते ही हैं, क्योंकि हम में से कई लोगों का हरे कृष्ण आंदोलन से परिचय इस फिल्म के माध्यम से हुआ। प्रथम बार हरे कृष्ण महामंत्र सुना भी होगा, हरे कृष्ण हरे राम, तो इस गाने से ही। तो भक्त लोग प्रचार कर रहे थे और बेचारे जहां कहीं भी जाते लोग आकर उपहास पूर्वक उनके सामने कहते दम मरो दम मिट जाए गम, हरे कृष्ण हरे राम। तो भक्त लोग परेशान हो गए, बोले क्या चल रहा है ये। एक तो पाश्चात्य देश के थे, अंग्रेजी बोलने वाले, और ये लोग आके क्या बीच बीच में उनको कह रहे हैं, रस्ते पर स्ट्रीट पर जहां कहीं भी किताब वितरण करने जाए। तो गिरिराज महाराज उस समय चेन्नई में थे, मद्रास में, उनके मन में जिज्ञासा हुई जानने की कि ये लोग बोलते क्या है हरे कृष्ण हरे राम, उसके पहले दम मरदो में है क्या चीज। तो जाकर वहां मद्रास में किसी एक व्यक्ति को पूछे ये गाने का अर्थ क्या है भाई। और वो बेचारा मद्रासी था, हिंदी ठीक प्रकार से जानता नहीं था, उसने अनुवाद करके कह दिया कि ये गाने का अर्थ है कि सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम जपोगे तो सारा दुख दूर हो जाएगा, मिट जाए गम। तो ये अनुवाद सुनकर बड़े प्रोत्साहित हुए, सोचे अरे भगवान कितने कृपालु हैं, कैसे अच्छे अच्छे फिल्म प्रोड्यूसर भेज रहे हैं, बिना कहे ही हमारे इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। ये सोचकर कलकत्ता में गए और फिल्म का टिकट लिया और सिनेमा हॉल में गए देखने के लिए कि फिल्म क्या है। प्रथम सीन में दिखाया कि भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, देख के लगा वाह वाह वाह, प्रोड्यूसर को भगवान का आशीर्वाद हो। दूसरे सीन में दिखाया कि सब भक्त लोगों को गांजा फूंकते हुए दिखाए हैं, तो तुरंत समझ गए कि अनुवाद में कुछ गलती थी। बाहर निकलकर प्रभुपाद के पास आए और कहने लगे हम लोग भगवान के प्रचार करने का इतना प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए लोग किस तरह का फिल्म बना रहे हैं और उसमें कैसे कैसे अश्लील गीत डाल दिए हैं, दम मरो दम मिट जाएगा, ये क्या चल रहा है श्रील प्रभुपाद, ऐसा क्यों हो रहा है, ये अन्याय है। तो प्रभुपाद बड़े शांत भाव में उत्तर दिए, अरे जगत की नीति है कि जो कोई सत्कार करने का प्रयास करेगा, भगवान के नाम का प्रचार करने का प्रयास करेगा, जगत के लोग कौवे की तरह उस पर टूट पड़ेंगे और नोच मार मार कर उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ये भौतिक जगत तो ऐसे ही लोगों से भरा हुआ है, लेकिन चिंता मत करो, समय की बात है। इसमें कहा गया है दम मारो दम, लेकिन काल के प्रभाव से लोग दम मार मार के भूल जाएंगे और अंत में केवल बच जाएगा हरे कृष्ण हरे राम। और प्रभुपाद की यह उक्ति वास्तव में सार्थक हुई कि 1996 में दिल्ली के मंदिर के ओपनिंग के लिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वयं आए प्रधानमंत्री। जो 1971-72 में हरे कृष्ण आंदोलन को लोग CIA एजेंट कहते थे। और यह भी बड़े मजे की बात है कि वाजपेयी जी कनाडा में घूम रहे थे 1984-85 में, तब सत्ता में भाजपा नहीं थी, और कनाडा में घूमते घूमते अचानक उनका कार ब्रेकडाउन हो गया, तो रास्ते में लिफ्ट के लिए मांग रहे थे, कोई गाड़ियां रुकी नहीं, एक गाड़ी आकर रुक गई। वो हरे कृष्ण आंदोलन का एक ब्रह्मचारी अपना संकीर्तन वैन के साथ जा रहा था, उसको पता नहीं है कौन अटल बिहारी है और कौन वाजपेयी है और क्या भाजपा है, उनको बस लगा कि कोई दो व्यक्ति प्रतिष्ठित भारतीय परिवार के लग रहे हैं, उसको लगा थोड़ा किताब बेच दूंगा अच्छा काम है, तो ये सोच के गाड़ी रोक लिया और गाड़ी में ले लिया उनको। और जाते जाते वो हरे कृष्ण आंदोलन के बारे में प्रचार करने लगे, उनको पता नहीं ये कौन है। और उनके इस प्रवचन को सुनकर, उनके प्रचार को सुनकर वाजपेयी जी बहुत प्रभावित हुए और कहा कि आप ऐसे नवयुवक हो, पाश्चात्य देश में जन्म लेकर अपना जीवन गीता के प्रचार के लिए लगाए हो, ये आंदोलन से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। तो फिर भी उनको दो चार गीता उन्होंने बेच ही दिए और वो गीता लेकर चले गए और इस बात को उनको मन में ध्यान में रखे थे। और फिर बाद में चल के भक्तों ने उनको जब निमंत्रण दिया तो उनको ये बात याद आई और उन्होंने कहा कि हरे कृष्ण आंदोलन बहुत अच्छा कार्य करते हैं और कनाडा में मेरा इस प्रकार का अनुभव रहा है और इसलिए आपके मंदिर के उद्घाटन के लिए अवश्य आऊंगा। तो इसीलिए किताब वितरण करते समय समझना चाहिए कि कौन किससे भेंट करेगा कोई कह नहीं सकता, विनम्रता पूर्वक सबको किताब देने का प्रयास करना चाहिए। जिसको आप आज ग्रंथ दे रहे हो सकता है कल प्रधानमंत्री बन जाए। तो इसलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। जैसे एक भारतीय क्रिकेट टीम एक फ्लाइट पर जा रही थी बेलगाम के मैच के लिए, उसी फ्लाइट पर राधानाथ महाराज भी थे और साथ में गोविंद प्रभु भी थे, और महाराज जी जानते नहीं थे ये क्रिकेट टीम क्या है। और जब फ्लाइट बेलगाम में उतरी तो बेलगाम के सब भक्त लोग स्वागत करने आए थे हार वार के साथ, क्रिकेट टीम बाहर निकली और उनको लगा हमारे लिए लोग आए हैं और प्रतीक्षा कर रहे थे कि अभी हार गिरेगा अभी हार गिरेगा। चलते चलते थक गए, एक भी हार गिरा नहीं, और भक्त लोग केवल उनको कह रहे चैंड हरे कृष्णा, चैंड हरे कृष्णा। और फिर अंत में फिर महाराज बाहर निकले और उनको हार चढ़ाया गया। और फिर जो क्रिकेट टीम में से एक खिलाड़ी था अजय जडेजा, उसने कहा कि मैं आपकी थोड़ी सहायता करता हूं करके उन्होंने उनका बैग वैग उठाया और कहा कि ठीक है भविष्य में आपके मंदिर वगैरह में भी आऊंगा। वो कहने लगा मेरे भी अपने जीवन में भक्ति करने की बहुत इच्छा है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता, उन्होंने ऐसा कहा। तो भगवान ने उनके वाक्य को बहुत सीरियस ले लिया और कुछ ही महीनों में वो भारतीय क्रिकेट टीम से बैन ही हो गए। तो इस तरह कभी ये विचार न करें कि भक्ति करेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। अर्जुन गीता सुनने के बाद अपने पुत्र अभिमन्यु को खो बैठे। तो कहीं पर गीता में कृष्ण ये नहीं कहते हे अर्जुन गीता सुनो जिससे सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी, इसके पश्चात कभी कोई समस्या नहीं आएगी, नहीं, कहीं कोई गारंटी नहीं दिया है। अभिमन्यु के मृत्यु के पश्चात शोक संताप करते हुए अर्जुन अश्रुधारा बहा रहे थे, कृष्ण उनके पास आकर जोर जोर से क्रंदन करने लगे। उनके रुदन को देखकर अर्जुन कहने लगे अभिमन्यु तो मेरा पुत्र था, तुम क्यों रो रहे हो कृष्ण? कृष्ण ने कहा अभी मैंने पूरा गीता तुमको एक घंटा सुनाया, इतना सुनने पर भी तुम रो रहे हो, ये देख के मैं रो रहा हूं कि गीता सुनाया तो क्या सुनाया और समझे तो क्या समझे। इसलिए कभी ये विचार न करें कि भक्ति करने का अर्थ है कि भौतिक जगत में एसी लग जाएगा, भौतिक जगत की दावाग्नि उतने ही टेम्परेचर में चलती रहेगी और जब संतप्त तो होना हो हम होंगे ही, लेकिन सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है और प्रत्येक समस्या को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। भक्ति करने का अर्थ ये नहीं कि हमारा अपमान नहीं होगा, भक्ति करने का अर्थ ये नहीं कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, भक्ति करने का अर्थ ये नहीं कि हम पदच्युत नहीं होंगे। नाना प्रकार के समस्याएं जीवन में आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। हम लोग किसी को गलत आशा नहीं देना चाहते, गलत विज्ञापन, गलत प्रोडक्ट नहीं देना चाहते, लेकिन भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे और इन श्लोकों को ध्यानपूर्वक गौर करेंगे तो किस तरह मन को वशीभूत करना है इसकी शक्ति आ जाती है, ये शैली सीख जाते हैं और मन के विकार हम पूर्ण रूपेण नष्ट कर पाते हैं। और मनोविकार जब नष्ट हो जाते हैं तो मन अपने स्वस्थ रूप को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए यहां पर वो कह रही हैं यदिच्छसे अध्यासनम उत्तमो यथा। सुनीति कह रही अपने शिशु ध्रुव को कि बेटा जैसे आपकी माता विमाता सुरुचि ने कहा है श्रेष्ठ वचन है। तो यह है सकारात्मक दृष्टिकोण। तो अब कोई विचार कर सकता है कि यह केवल सांत्वना देने के लिए कुछ ऐसे वचन कह रही है, क्या वास्तव में इस बात को वो सिद्ध कर सकती हैं? तो अब अपने इस वाणी की पुष्टि करने वो आगे कहती हैं, यस्यांग्रि पद्मं परिचर्य विश्व विभावनायात्त गुणाभिपत्ते है कि बेटा जो ब्रह्मा जी हैं संपूर्ण 14 लोकों के सृष्टि का शक्ति उनको कहां से प्राप्त हुआ। यस्यांग्रि पद्म परिचर्य विश्व भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की आराधना करके, तो ब्रह्मा जी को इस संपूर्ण जगत के विधाता का पद केवल भगवान के चरणों से ही प्राप्त हुआ है। और अजोद्यतिष्ठत खलु पारमेष्ठ्यम जितम पदम जितात्मा श्वसनाभिवंद्यम। बड़े बड़े योगीगण अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके जिस भगवान को प्राप्त करने का दीर्घकालीन प्रयास करते हैं वो प्रयास ब्रह्मा जी से आरंभ हुआ और तब भगवान के दर्शन करके भगवान से शक्ति संचार करके ही ब्रह्मा जी इस जगत का निर्माण कर पाए। अर्थात ब्रह्मा जी भी अपने प्रयासों में स्वतंत्र नहीं, भगवान पर आश्रित हैं। कई बार लोगों के मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि श्रीमद् भागवत के नाना श्लोकों में भगवान की शक्ति, भगवत्ता का इतना विस्तृत रूप से वर्णन क्यों होता है? श्लोक और प्रति श्लोक में भगवान शक्तिशाली हैं, महान हैं, सभी कारणों के कारण हैं, भगवान की अपरिछिन्नता शक्ति, विभूता शक्ति, नाना प्रकार की शक्तियां कितनी व्यापक हैं, इसके विषय में बारंबार इन श्लोकों में वर्णन क्यों होता है? इतना व्यापक वर्णन की क्या आवश्यकता है? इसका एक ही कारण है कि अनादिकाल से जीव के चित्त में भोक्तापन का अभिमान इतना ठूस ठूस कर धसा हुआ है कि जब तक निरंतर श्रवण कृष्ण के शक्तिमत्ता का नहीं करेंगे, तब तक हम इस भोक्तापन की भावना से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि हम सभी अब इस समय आश्वस्त हैं कि मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही केंद्र हूं। भक्त बनने के बाद भी यह भावना इतनी जल्दी निकलती नहीं, तो इसलिए निरंतर श्लोकों में वर्णन आता है कृष्ण ही सर्व कारणों के कारण हैं। अरे ब्रह्मा जी जिनके चार सर हैं, हम लोग तो एक सर को संभाल नहीं पाते, ब्रह्मा जी के चार चार सर हैं और चारों सरों से वो पूरे इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। सारे वेद उन्होंने केवल अपने मुखों से प्रसारित कर दिया, वो ब्रह्मा जी भी भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं। तो ये है भगवान, और इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैन वर्क्स हार्ड बट द लॉर्ड अल्टीमेटली ग्रेसेस विद सक्सेस। तो हम केवल कर्म प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सफलता या विफलता भगवान के हाथ में है। तो यह समझना चाहिए कि मैं करता नहीं। प्रभुपाद जी के पास एक बहुत बड़े उद्योगपति आए दिल्ली से, और वो कहने लगे, स्वामी जी मेरा एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है दिल्ली में, एक और फैक्ट्री यहां जयपुर में है, एक और फैक्ट्री यहां पर है, लेकिन फैक्ट्रियों में इतनी समस्याएं चल रही हैं कि रात को मेरे निद्रा भंग हो जाती है। प्रभुपाद ने कहा, वो सारी फैक्ट्री हरे कृष्ण आंदोलन को दे दो, आप आराम से सो जाओ। तो घबरा गए, बोले ठीक है स्वामी जी, बाद में आपको मिलेंगे हम। तो प्रभुपाद बोले, इनका एड्रेस ले लो। बोले नहीं नहीं, आपका एड्रेस मेरे पास है। प्रभुपाद ने कहा, लेकिन आपका एड्रेस हम भी चाहते हैं। और वो बेचारे चले गए एड्रेस दे के। प्रभुपाद कहने लगे, देखो कैसे बद्ध जीव के मन में यह भ्रांत धारणा होती है कि मैं अपने कपोल कल्पित धारणाओं से जीवन में सुख की रचना कर सकता हूं, स्वतंत्र रूप से भगवान की उपेक्षा करके मैं केवल अपनी शक्ति और बुद्धि का प्रयोग करके अपने सौभाग्य का उदय कर सकता हूं। यह बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है। इसलिए यहां पर वर्णन आ रहा है, अजो अद्यतिष्ठत खलु पारमेष्ठ्यम। अरे हम और आप, हम तो बड़े ही शक्तिहीन जीव हैं, तुच्छ जीव हैं। ब्रह्मा जी को भी भगवान के आशीर्वाद के बिना लाभ प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्मा परफॉर्म्स ऑस्टेरिटी, लॉर्ड्स मर्सी गिव्स हिम एग्जॉल्टेड पोजिशन ऑफ क्रिएटर। ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और भगवान की कृपा से उनको यह पद प्राप्त होता है। तो आगे सुनीति कहती है कि ब्रह्मा जी के साथ साथ एक और मैं उदाहरण दे दूं, तथा मनोरवो भगवान पितामहो यम एकमत्या पुरुदक्षिणै मखै। आपके पितामह स्वयंभुव मनु, उत्तानपाद के पिता स्वयंभुव मनु भी दीर्घकालीन तपस्या करने के बाद, नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान संपन्न करने के बाद, प्रचुर मात्रा में दक्षिणा देने के पश्चात अपने इस पद को प्राप्त किए। इष्ट्वा भिपेदे दुर्वापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यं यथापवर्ग्यम्। अर्थात मनु को भी ये पद केवल भगवान को संतुष्ट करने के बाद ही प्राप्त हुआ। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, सफल व्यक्ति के दो लक्षण होते हैं। इस जीवन काल में वह भौतिक सुख प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात वह मुक्ति प्राप्त करता है। तो ये दो लक्षण स्वयंभू मनु के जीवन में हम देखते हैं। और एक शब्द का प्रयोग हुआ है, इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापम अन्यतो। अन्यतो अर्थात स्वयंभू मनु ने अन्य किसी व्यक्ति के तलवे नहीं चाटे, इस जगत के अन्य किसी व्यक्ति के चरणों में जाकर आरतियां नहीं उतारी, केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों की आराधना करने मात्र से ही उनको यह श्रेष्ठ पद प्राप्त हो गया। तो यह सिद्धांत ध्वनित हो रहा है कि हमको अपने जीवन में भौतिक सुख और आध्यात्मिक पराकाष्ठा के लिए इस जगत के अन्य किसी व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही ये सारे दिव्य भौतिक और आध्यात्मिक सुख देने में पर्याप्त हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर आ रहा है। कई बार भारत में लोगों को लगता है कि 33 कोटि देवतागण हैं, अलग अलग देवताओं को संतुष्ट करने पर ही मैं शक्ति प्राप्त कर सकता हूं। एक बार मैं किसी के घर में गया था और बहुत सारे वहां पर नाना प्रकार के देवताओं के चित्र और मूर्तियां वहां रखी हुई थी, तो हमने कहा कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, क्या आप जानते हो इस बात को, वो भगवान है, सभी देवताओं के भी कारण वही हैं, गीता में इस बात की पुष्टि हुई है। तो उन्होंने कहा, देखो भैया, हम लोग तो इतना टेंशन नहीं लेते, प्रतिदिन पूजा करते समय हम अपना अगरबत्ती चला देते हैं और अपना अगरबत्ती जितने यहां पर फोटो हैं सबको दिखा देते हैं, जिसकी जितनी शक्ति होगी वो ले लेगा, हम अपनी ओर से क्यों बताएं कि आप महान हो, आप श्रेष्ठ हो, हम इन सब उनके बीच का मामला है, ये हमको उसमें नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्र में इस बात का वर्णन हुआ है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इसलिए भारत जो कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से पूरे विश्व का अग्रणी है, नेता है, अब कलयुग में इतना बुरी तरह से पिट गया है कि भारत में लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं कि भगवान कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है, भक्ति क्या है, किस तरह से भक्ति करनी चाहिए। और भारत में भी नास्तिकवाद का आजकल प्रचार होने लगा है। जैसे मैं एक कथा बताता हूं कि एक कम्युनिस्ट एक बार रशिया से भारत में आए और भारत के अलग अलग स्थानों में अलग अलग मंदिरों में भ्रमण करने के बाद वो बस जा रहे थे, दिल्ली के एयरपोर्ट पर उनको किसी ने प्रश्न किया कि भारत से जा रहे हो, अब आपका क्या अनुभव है। तो उन्होंने कहा, भारत में आने के पहले मैं नास्तिक था, भारत में आकर देखने के बाद अब मैं भगवान में विश्वास रखने लगा। तो बोले, अच्छा कौन से मंदिर में गए भाई, कौन से भगवान के दर्शन से इतना प्रभाव पड़ा है। वो बोले, नहीं भगवान भगवान पता नहीं मुझे, मंदिर मंदिर का पता नहीं, लेकिन मैं बहुत सारे दफ्तरों में गया, कितने ही सरकारी दफ्तरों में गया, लोग टीवी देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, पत्ता खेल रहे हैं, काम कुछ हो नहीं रहा, फिर भी देश चल रहा है, सरकार चल रही है। तो मैंने कहा, भगवान के सिवा और कौन चला रहा होगा। तो वास्तव में भारत में वैदिक सभ्यता और संस्कृति के इतने वांग्मय दिए गए हैं और इन सभी शास्त्रों में कृष्ण भगवान है, इसकी पुष्टि हुई है। तो भगवान के अस्तित्व के विषय में हमको यहां वहां देखकर दर्शन करके जानने की आवश्यकता नहीं, केवल शास्त्रों के पठन से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं, इष्ट्वा भी पेदे दुर्वापम अन्यतो भौमम सुखम। तो अब अंत में सुनीति कहती है, तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभि मृग्य पदाब्ज पद्धतिम। हे पुत्र, आप कृपा करके ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों को धारण करो जिनका हृदय कोटि कोटि माताओं के वात्सल्य प्रेम से अभिभूत है, आप मेरे पास आए हो शोक संतप्त अवस्था में, आप शोकातुर हो और मैं शोक व्यक्त कर रही हूं, तुम्हारा शोक मेरे शोक से कटने नहीं वाला, इसलिए व्यर्थ समय व्यतीत करने से अच्छा है, श्रेष्ठ है कि हम इस समस्या का समाधान ढूंढें। वत्साश्रय भृत्य वत्सलम, भगवान भक्त वत्सल हैं, ऐसे भक्त वत्सल भगवान का आश्रय लो। मुमुक्षुभि मृग्य पदाब्ध पद्धतिम, और दीर्घ काल से मुमुक्षु मुक्ति की कामना से अपने समस्या के समाधान ढूंढते हुए कोटि कोटि महात्मा गण भगवान को ढूंढते हुए वन में गए हैं। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम, अनन्य भाव के साथ आप इनका भजन करो। मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम, अपने दैनिक कार्य करते हुए नाना प्रकार के उत्तरदायित्वों को जीवन में महत्व देते हुए आप कृष्ण को, भगवान श्री नारायण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाओ और देखो कैसे जीवन में महान परिवर्तन आता है। सत्य घटना बताऊंगा, एक हमारे भक्त हैं बंबई में, वो एक बिजनेस आरंभ किए और बिजनेस आरंभ करने के पश्चात जिस दिन से बिजनेस आरंभ किया अगले दिन से बिजनेस में घाटा होने लगा, बड़े परेशान थे। तो अमेरिका के पिट्सबर्ग शहर में वो एक दिन राधानाथ महाराज के साथ गाड़ी में जा रहे थे, तो महाराज ने कहा कि कोई टॉयलेट है क्या आसपास, तो उन्होंने कहा हमारा कंपनी का यहीं पर ऑफिस है, आप वहां आ जाइए। तो वहां वो आ गए और कंपनी का जो टॉयलेट था, शौचालय था, उसका प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने कहा महाराज को कि आप जरा आके बैठिए और हमारे यहां पर जो कैबिन है इस कैबिन में बैठ जाइए, हमारे कुर्सी पे बैठ जाइए। तो उनके कुर्सी पे बिठा दिया। तो कई बार साधु लोग कहीं जाते हैं तो लोग कुर्सी पे बिठाते हैं, है कि नहीं, कि कृपा करके हमारे कुर्सी पे बैठिए। कई बार मैं जाता हूं यहां वहां तो लोग कहते हैं अरे हमारे ऑफिस में आइए, जरा बैठिए कुर्सी पे बैठिए, लेकिन उठ भी जाइए, ज्यादा देर मत बैठिए, ज्यादा देर बैठेंगे तो घबरा जाएंगे, थोड़ी देर बैठिए। तो वो बैठ गए, तो उसके बाद चले गए और पता नहीं भगवान की क्या ऐसी लीला हुई, अगले दिन से कंपनी का ऐसा प्रॉफिट होने लगा, सीधा ऊपर उठने लगा, जो करोड़ों का नुकसान चल रहा था वो कुछ ही दिनों में पूर्ण हो गया और वो मुनाफा कमाने लगा। और देखते ही देखते लगभग 1997-98 में आरंभ किया, सन 2002 तक कंपनी का वैल्यू करोड़ों करोड़ों का हो गया, कई हजार करोड़। तो एक दूसरे व्यक्ति आए कंपनी खरीदने के लिए, तो उन्होंने पूछा कितना दाम है आपका, इजराइल का एक कंपनी था वो खरीदना चाहता था, तो इन्होंने बता दिया इतना इतना दाम है, तो वास्तविक दाम से कहीं अधिक बताया उन्होंने। तो बोला क्या बात करते हो, वाई शुड आई पे सो मच, आपकी कंपनी में ऐसा क्या है कि इतना आप हजारों करोड़ मांग रहे हो। तो उन्होंने उत्तर दिया हमारी कंपनी भक्तों की कृपा से बनी हुई है, ये हमारे गुरु महाराज और वैष्णवगण के कृपा का एक रूप है। तो ये इजरायली कंपनी के जो सीईओ थे उन्होंने पहले बहुत सारे बिजनेस नेगोशिएशन किए थे, कभी ये उत्तर नहीं सुना था कि गुरु और वैष्णव की कृपा का एक प्रभाव है। बोले ये गुरु और वैष्णव क्या है भाई, तो बोले ये बहुत गहरी बात है, बिजनेस बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो बोले अच्छा क्या बात करते हो, मैं तो इतना पढ़ा हूं, डबल एमबीए हो, ये हुए हो, आज तक ऐसा कोई बात नहीं जो मैं नहीं जानता, ये पहली बार ये नया टेक्निक सुन रहा हूं बिजनेस में। तो बोले मुझे देखना है ये कौन है। तो बोले ठीक है आ जाइए। तो उन्होंने फ्लाइट बुक किया, टेल अवीव से बॉम्बे आए और बॉम्बे आने के बाद सीधा मंदिर में आके संडे फीस्ट प्रोग्राम देखा, भक्तों के कीर्तन को देखा और उसके बाद वैष्णव लोग को देखे और महाराज वगैरह सब भेंट किए और पूरे मंदिर के आध्यात्मिक परिवेश को देखने के बाद बाहर आकर बोले हम कंपनी खरीद लेंगे। और तुरंत उन्होंने हजारों करोड़ देकर वो कंपनी खरीद ली। तो हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील होने का अर्थ ये नहीं कि भौतिक रूप से उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, नहीं। लोग को लगता है कि समय कहां से मिलेगा, आध्यात्मिक कार्य में गतिविधि में समय लगाएंगे तो भौतिक कार्यों का क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यहां पर वो कह रहे हैं मुमुक्षु भी मृत्यु पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे, अनन्य भाव के साथ भगवान की भक्ति करो। अरे भगवान इतने वात्सल्य हृदय माता की तरह है, माता अपने शिशु के नित्य शुभ चिंतक होती हैं। तो भगवान जानते हैं कि हमारे शिशु के वर्धन के लिए, आध्यात्मिक भौतिक वर्धन के लिए क्या आवश्यक है, और वो अवश्य हमारे जीवन में भगवान लाकर देंगे। तो इस तरह से सुनीति अब अंत में ध्रुव महाराज को कहती हैं, नान्यम तत पद्म पलासलोचनात् दुख छिदम ते मृगयामी कंचन। वो कहती हैं कि मैं इस तीनों लोकों में और कोई व्यक्ति के विषय में सोच नहीं सकती जो आपके इस दुख का शमन करे। पद्म पलासलोचनात् अर्थात कमल नयनी अति सुकुमार मनोहर पूर्ण पुरुषोत्तम ज्ञान गण चिद गण परमानंद कंद भगवान के चरणों का आश्रय लो, और कोई आपके इस दुख के सागर का शोषण नहीं कर सकता। यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियेतरई अंग विमृग्य मानया। बहुत सुंदर श्लोक में कह रही हैं कि इस जगत के देवतागण भी लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष की याचना के लिए निरंतर आतुर रहते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी अपने हस्त कमल में कमल पुष्प को धारण करके भगवान श्री कृष्ण के चित्त को आकर्षित करने के लिए प्रयास करती रहती है, दीर्घकालीन तपस्या करती है कि कैसे भगवान के संगति को प्राप्त कर सकूं। तो इसलिए जिसके पास भगवान श्री कृष्ण का संग हो, कृष्ण के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी का निवास है, सौभाग्यवती लक्ष्मी जिनके वक्ष स्थल पर निरंतर विराजमान हो, ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय लेकर कभी जीवन में दुर्भाग्य का उदय नहीं हो सकता। इसलिए हमको प्राप्त करना है तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय अर्थात उनकी सेवा। इसलिए यहां पर वो कह रही हैं, यो मृग्यते हस्त गृहीत पद्मया। बहुत ही ये सुंदर श्लोक है, और सामान्यतया इस जगत में लोग लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बहुत आतुर होते हैं। भगवान को कहा गया है लक्ष्मीकांत, और लोग अपने घरों में लक्ष्मी पूजा वगैरह करते हैं, एक पूजा कभी मिस नहीं करते, वो लक्ष्मी पूजा। और लक्ष्मी पूजा के लिए भी इतना विशेष रूप से प्रयास करके और घर के द्वार वगैरह खोल देते हैं, खिड़की वगैरह भी खोल देते हैं, और ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी जी कहीं से भी आ जाती है तो कहीं पीछे के दरवाजे से आ जाए वहां से भी एंट्री होना चाहिए उनका। और नारायण के साथ आए तो कह देते, नारायण को पड़ोसी के घर भेज देते, आप आ जाइए। तो लक्ष्मी जी के प्रति भगवान से अधिक कामना होती है, लोगों की आसक्ति होती है। इसलिए यहां पर सुनीति कह रही हैं कि यदि भगवान नारायण की सेवा करोगे तो अपने आप जो सौभाग्य है आपके द्वार पर बिना याचना किए ही आ जाएगा। तो इसलिए वो कह रही हैं अब आप अपने सौतेली मां के कर्कश वचन के कारण बहुत द्रवित हो, परेशान हो, सौभाग्य के लिए एक ही रास्ता, एक ही मार्ग में देख रही हूं, कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय। इस जगत में बिना कुछ मूल्य चुकाए हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। सुनीति माता के रूप में अपने पुत्र को उचित नीति उचित मार्गदर्शन दे रही है। देखिए आप सभी माता पिता अपने पुत्रों को श्रेष्ठतम सर्वोच्च दान देना चाहते हो, ज्ञान देना चाहते हो, आप उनके जीवन में सुख देखना चाहते हो। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य बनता है कि अपने अधीनस्थ शिशुओं को भगवत भक्ति में अग्रसर करे। एक बार बंबई में मैं रास्ते में जा रहा था प्रचार करने के लिए, एक मां अपने बच्चे के साथ जा रही थी। बच्चे ने मां को पूछा, मुझे देखकर, मां ये कौन है, ये व्यक्ति कौन है? और मां बच्चे को कहती है, बेटा ये भूत है। तो सोचिए इस तरह का उनको प्रचार हो रहा है। तो बच्चा बड़ा होगा तो हरे कृष्ण के भक्तों को देखकर उसको लगेगा ये सब भूत हैं, पिशाच हैं, नाच रहे हैं, हरे कृष्ण मंदिर को भूत बंगला समझेगा वो। तो इस तरह का मार्गदर्शन कदापि अनुचित है। तो हमें चाहिए कि बच्चों को मार्गदर्शन दे। जैसे भी कल दो दिन पहले गोविंद प्रभु एक सुंदर कथा बता रहे थे कि एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने घर पर पिता के जेब से सिगरेट चुरा लिया। पिता के जेब में सिगरेट का पैकेट था, उसमें से एक सिगरेट चुरा लिया। तो पिता आए, जेब से सिगरेट का पैकेट निकाले और गिनती किए तो एक सिगरेट कम था। तो अपने पुत्र को बुलाए और कहा, बेटा कभी आपको इस तरह की चोरी नहीं करनी चाहिए। यू शुड नेवर बी डिसऑनेस्ट। कभी असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो जीवन में करना है सत्यवादी होके करना चाहिए। क्यों छुप छुप के चुराते हो, हमारे सामने ही बैठ के पियो। और उसके पश्चात पिता पुत्र दोनों बैठकर साथ में ही दम लगाते थे और साथ में ही सिगरेट फूंका करते थे। तो इस तरह वो अपने मित्रों को कहता था कि देख हमारे घर में कितना हमारा शिष्टाचार है, जो कुछ होता है खुल्लम खुल्ला चलता है। ये माता पिता का कर्तव्य नहीं, उनका कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे। आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना बहुत आवश्यक है। सुनीति उचित नीति के साथ अपने शिशु को सही दिशा दिखा रही है और उसको प्राप्त करने के लिए ध्रुव वन में जाने के लिए तैयार हैं। देखिए सामान्य व्यक्ति वन के विषय में सोच के घबराता है। कलयुग में तो आजकल कोई जंगल बचे ही नहीं, तो जंगल में जाएंगे कहां? जंगल में जाएंगे भी तो मंगल नहीं होगा, क्योंकि जंगल में वीरप्पन जैसे लोग घूमते हैं। और वहां पर भी जाओ तो कोई आध्यात्मिक परिवेश नहीं। वो एक समय दूसरा था जब जंगल में साधु संत हुआ करते थे, इसलिए वहां लोग कहते थे वन में चले जाओ भगवत प्राप्ति के लिए। इसको सुनकर ध्रुव महाराज वन की ओर चले गए। अब वन में वो प्रवेश करते हैं तो वर्णन आ रहा है, एवं संजल्पितुम मातुर आकर्ण्यर्थागमं वच संयम्यात्मनात्मानम निश्चक्राम पितुः पुरात। ध्रुव ने अपने मन को और इंद्रियों को समाहित किया। निश्चक्राम पितुः पुरात, पिता के राजमहल के राजसी ऐश्वर्य को ठुकराकर वो वन में निकल गए। वन के नाना प्रकार के सुस्वादु व्यंजन, बड़े सुंदर सुंदर पोशाक इत्यादि छोड़कर ध्रुव देखिए वन में चले गए। लोग कहते हैं जीवन की समस्या है रोटी कपड़ा और मकान। ध्रुव के पास अपने जीवन में रोटी कपड़ा मकान की कोई समस्या नहीं थी। क्या वो सुखी थे? उनका मन नाना प्रकार की चिंताओं से उमड़ रहा था, परेशान थे वो। इसलिए जब तक मन को नियंत्रित नहीं करेंगे और मन को विकारों से शुद्ध नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकते। संयम्यात्मनात्मानम निश्चक्राम पितुः पुरात, वो निकल पड़े अपने पिता के घर से। पिता के प्रति रोष की भावना थी, सौतेली मां के प्रति क्रोध की भावना थी, प्रतिकार की भावना थी, लेकिन क्योंकि माता ने भक्ति का उचित मार्गदर्शन दिया। एवं संजल्पितुम मातुः, संजल्पितुम अर्थात उचित शब्द, अर्थ आगमम वच, अर्थ आगमम अर्थात ऐसे शब्द जिनको जीवन में उतारने पर जीवन की दिशा बदल जाती है और वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, इसको कहते हैं अर्थ आगमम। तो निरंतर यदि हम ऐसे शब्दों के निकट अपने कानों को रखें जिसको सुनकर दिशा बदल सकती हो, उन्नति हो सकती हो, तो अवश्य हमारे जीवन में उद्धार होगा। नाना प्रकार के अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों को निरंतर सुनते रहेंगे, केवल मनोरंजन हेतु नाना प्रकार के कर्कश ध्वनि सुनते रहेंगे, तो केवल जीवन में अधोगति ही निश्चित है। सुनीति अर्थात उचित नीति दी, लेकिन ध्रुव के चित्त में भी संकल्प श्रेष्ठ था, तो दोनों का समागम जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़ा श्रेयस्कर होता है। इसलिए जब तक दृढ़ता न हो तब तक उचित वाणी सुन के भी कोई लाभ नहीं। एक बार मैंने एक सज्जन को अपने मंदिर के प्रोग्राम में निमंत्रण दिया, कहा कि संडे के दिन हमारा संडे फीस्ट होता है, आप आइए। तो वो कहने लगा कि नहीं, अभी यहां पर एक नया फिल्म निकला है भगत सिंह, मैं वो देखने जा रहा हूं। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? बोला नहीं नहीं, ये देश प्रेम के ऊपर है तो हम उसको देखने जाने वाले हैं। तो मैंने कहा चिंता मत करो, आप हमारे मंदिर में आ जाओ, संडे के दिन हम लोग का वहां पर भी भगत सिंह दिखाएंगे आपको। तो बोले क्या बात करते हैं, तो बड़ा अजीब मंदिर है, यहां पर भी पिक्चर दिखाते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, हमारे संडे के दिन बहुत सारे भगत लोग आते हैं और सब लोग सिंग करते हैं कीर्तन, तो आप कीर्तन में आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। तो वो सुनकर मंदिर में आए, कीर्तन में भाग लिए, इतना अच्छा लगा, और कुछ समय में वो भक्त बन गए और अभी दीक्षित भी हो गए। तो हो सकता है कुछ वाणी सुनकर जीवन परिवर्तित हो जाए, कुछ समय के लिए हम भक्तों के संग में आ जाए तो भी जीवन परिवर्तित हो जाता है। लॉस एंजलस की सत्य घटना बताते हैं, एक पुजारी थे जो भक्तों के संग में आ गए थे, भगवान की पूजा करने लगे और कुछ साल के बाद उनको लगा कि बहुत सेवा पूजा कर ली, अब मुझे यहां से निकलना चाहिए। तो ये सोच के मंदिर से बाहर निकल गए और कहा कि मैं अब समुद्र में जाके सर्फिंग करूंगा। तो सर्फ बोर्ड लेके आ गए और समुद्र के अंदर चले गए, लेकिन उस दिन शार्क मछली आ गई और शार्क मछली ने दूर से देख लिया कि अच्छा खासा रिष्ट पुष्ट व्यक्ति घूम रहा है। मंदिर में तीन चार साल निकाला था तो काफी प्रसाद भी खाया था, महाप्रसाद भी खाया था। तो शार्क आकर्षित होकर उसके पास आने लगी और ये सोचने लगा ये क्या हुआ, इतने साल में इस तरह समुद्र में आकर मनोरंजन करता था, ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हुई, ये क्या हुआ? ये सोच के वो नरसिंह आरती गाने लगे, क्योंकि इतने साल मंदिर में थे, जानते थे कौन सा इमरजेंसी बटन कब दबाना है। नरसिंह आरती गाने लगे तो नरसिंह आरती समाप्त हो गया तो शार्क और तीव्र गति से पास आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था शार्क भी नरसिंह देव का ही भक्त था। तो ये सोचे अब ये क्या हो गया करके मंगल आरती गाने लगे, फिर तुलसी आरती गाने लगे, जितने आरती उनके बुद्धि में आ रहा था सब गाते गाते थक गए, सारी आरतियां सारा कीर्तन समाप्त हो गया, लेकिन शार्क रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और इतना निकट आ गया। तब हाथ जोड़कर इन्होंने कहा, भगवान रुक्मिणी द्वारकाधीश, आपकी सेवा छोड़कर मैं निकला माया का भोग करने, बहुत बड़ी भूल हुई है, मैं ये जितने यहां पर प्राणी यहां चर अचर घूम रहे हैं उनकी सौगंध खा के कहता हूं, यहां से निकलूंगा तो सीधा आपके चरण कमलों में जाकर आपकी सेवा करूंगा और फिर भक्ति छोड़कर मंदिर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, बस ये जरा शार्क को जरा दूर भेज दो। तो इतना प्रार्थना किया कि वो शार्क भी पता नहीं भगवान ने प्रेरणा दे दी, परमात्मा स्वरूप वो निकट आया बेचारा, और निकट आकर केवल यूं देखकर वहां से साइड से निकल के चला गया और ये सीधा भागे भागे मंदिर आए। टेंपल प्रेसिडेंट ने पूछा, बहुत दिन से दिख नहीं रहा था, कहां गया था? उसने कहा नहीं नहीं यही था, थोड़ा घूम के आ गया मैं, लेकिन अब कहीं नहीं जाऊंगा, जीवन भर का साक्षात्कार मिल गया, हमारे एक गुरु जी मिल गए हमको बाहर, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान हमको प्राप्त हो गया है, अन्य लोगों की सुगम यात्रा कभी नहीं करेंगे। तो अन्य लोगों की दुर्गम यात्रा करके आए हैं, भक्ति मार्ग बड़ा सुगम है, इस सुगम मार्ग को छोड़कर कहीं भी जाएंगे तो अंततो गत्वा दुर्गम पथ ही प्राप्त होगा। तो यहां पर ध्रुव महाराज आलिशान राजमहल में पले बड़े हैं, लेकिन देखिए मन जब चिंतित होता है तो कुछ सभी कुछ बेस्वाद लगता है और सब कुछ तिरस्कृत करके वो चले गए हैं वन में। और वन में जाते हैं तो क्या होता है ये देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। वन में प्रवेश करते हैं तो यहां श्लोक आता है, नारदस्तत उपकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्पृष्ट्वा मूर्धनि अगग्नेन पाणिना आह विस्मित। नारद मुनि वहां वन में प्रकट हुए। तब लोग प्रश्न करेंगे, नारद मुनि को कैसे पता भाई कि ध्रुव महाराज भटक रहे हैं? वहां पर दूर दूर तक किसी प्रकार के संचार के साधन नहीं, दूर संचार के साधन नहीं, न मोबाइल है, न लैपटॉप है, न ईमेल की कोई सुविधा है, तो नारद मुनि को कैसे पता पड़ा? आप लोगों की कथाओं में सब लोग सही टाइम पे सब जगह पहुंच जाते हैं, इसलिए हमेशा हमको संशय होता है कि ये उचित है कि अनुचित, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस भौतिक जगत में भगवान सबके ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं, और जब भगवान देखते हैं कि कोई भक्त मेरे निकट आना चाहता है तो वो उचित प्रकार की प्रेरणा अपने भक्त के हृदय के भीतर दे देते हैं, और गुरु और शिष्य दोनों का मिलन अनायास हो जाता है। इसलिए यहां पर वर्णन आ रहा है, नारदस्तत उपकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्। ये जानकर तस्य चिकीर्षितम्, ध्रुव महाराज के इस प्रयास के विषय में समझकर वहां पर नारद मुनि प्रकट हुए। तो इसलिए साधु संग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक धूल का कण केवल जल के प्रभाव से कीचड़ बन जाता है, वही धूल का कण यदि वायु का संग करे तो वायु के प्रभाव से वो धूल का कण ऊपर उठकर सीधे कृष्ण के मयूर मुकुट पर जाकर स्थित हो सकता है। ये धूल के कण की अपनी कोई शक्ति नहीं, जल का संग करे तो कीचड़ बन जाए, वायु का संग करे तो भगवान के सर पर जाकर स्थित हो सकता है। संग से व्यक्ति पूरी तरह अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है। एक छोटा सा कीड़ा, उसकी क्या संभावना है कि भगवान के वक्ष स्थल को चूम सके, लेकिन वही तुच्छ कीड़ा कीट यदि किसी कुसुम या पुष्प का आश्रय ले, उस पुष्प को कोई माली चुन के ले आए और पुजारी उसका हार बनाकर भगवान को अर्पित करे, तो भगवान को अर्पित करने के पश्चात उस फूल माला के अंदर से वो कीट निकलकर भगवान के वक्ष स्थल को चूम लेगा। अर्थात हम भी कीट की तरह तुच्छ हैं, लेकिन पुष्प के समान कोमल महान भक्तों का संग करके हम भी भगवान के निकट प्राप्य हो जाते हैं। इसलिए साधु संग की बड़ी महिमा है। और यहां पर स्पृष्ट्वा मूर्धनि अगग्नेन, नारद मुनि के हस्त कमल का वर्णन आ रहा है, पाणिना आह विस्मिता। नारद मुनि का हस्त कमल अगग्नेन अर्थात पापनाशक बताया गया है। महान भक्तों के स्पर्श केवल हमारे जीवन में कोटि कोटि जीवन काल के पाप राशि का नाश कर सकती है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जीवन में जब साधु संग होगा, साधु संग से जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण वामनामृत संघ का निर्माण किया, इसकी स्थापना की, जिससे साधु संग प्राप्त हो। जैसे एक टेलीविजन का शो था, माइक लूसी शो, बड़ा ही प्रतिष्ठित शो था, लाखों लाखों की संख्या में ऑस्ट्रेलिया में लोग इसको देखते थे। प्रभुपाद को कहा गया, प्रभुपाद इस टीवी शो में हमको 2 मिनट का स्लॉट दिया है, आपको बुलाया है, आधा ऑस्ट्रेलिया इसको देखता है। प्रभुपाद ने कहा, उनको कहो कि हमको आधा घंटा चाहिए, 2 मिनट नहीं, आधा घंटा देंगे तब हम आएंगे। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद ये बड़ा ही प्रतिष्ठित शो है, इसमें दो मिनट से ऊपर नहीं मिल सकता। तो प्रभुपाद फिर मान गए चले गए। तो माइक लूसी एक तरफ बैठे थे, प्रभुपाद दूसरी तरफ, और वो बड़े कुप्रसिद्ध थे लोगों को नाना प्रकार से अपमानित करने के लिए। और दोनों के बीच में कृष्ण का एक सुंदर चित्र लगा हुआ था, कृष्ण का फोटो था। तो माइक लूसी कृष्ण के फोटो को देखे और बड़ा व्यंग्यात्मक ढंग से प्रभुपाद को देखकर कहने लगे, सो दिस इज योर गॉड, क्यों ये तुम्हारे भगवान है? तो प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया, दिस इज योर गॉड ऑल्सो, ये तुम्हारे भगवान भी है। अर्थात ये मत सोचो कि ये केवल किसी एक जाति विशेष के भगवान कृष्ण है। तो जब हम कहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये प्रत्येक जीव के पिता कृष्ण, इनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो अनुकूल ज्ञान की प्राप्ति हो वो इस साधु संघ में हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद लंदन में थे तो लंदन में एक रिपोर्टर उनको पूछने लगे, तो स्वामी जी आप लोगों का ये प्रचार क्या नरक में भी होता है क्या? प्रभुपाद ने कहा ये लंदन का नरक से कम है क्या? तो घबरा गया बेचारा। तो कहने लगा लेकिन यहां पे इतने सुंदर सुंदर बगीचे हैं, इतनी हरियाली है। प्रभुपाद ने कहा हां दिस इज अ ग्रीन हेल, ये एक हरा भरा नरक है और कुछ नहीं। तो श्रील प्रभुपाद ये भगवत वाणी लेकर विश्व के कोने कोने में गए और जहां पर नाना प्रकार की नारकीय स्थितियां हैं, जहां वैदिक सभ्यता और संस्कृति से लोग पूरी तरह अनिभिज्ञ हैं, वहां श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण और कृष्ण भावना के विषय में ज्ञान दिया। ये श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा पूरे वैष्णव इतिहास में प्रथम बार प्रदर्शित की गई है, श्रील प्रभुपाद जी की। तो यहां पर अगग्न अर्थात पाप का नाशक, तो यहां पर वर्णन आ रहा है पाप का अर्थ क्या है। पाप का अर्थ है भगवत प्राप्ति में प्रतिबंधक शुभ अशुभ कर्म। तो जैसे ही हम भगवत भक्तों के संग में आते हैं पापों का क्षय होने लगता है। तो अब नारद मुनि स्पृष्ट्वा मूर्धनि ध्रुव महाराज के मस्तक को अपने हस्त स्पर्श करके कहते हैं, विचार कर रहे हैं ध्रुव महाराज के तेज को देखकर, अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम अमृष्यताम। अरे देखिए एक क्षत्रियों का तेज कि थोड़ा सा अपमान सहन नहीं कर पाए, और ये कोई वयोवृद्ध क्षत्रिय नहीं, बालोपि अयम हृदाधत्ते यद समातुर असत्वच। ये इतने नन्हे से शिशु होते हुए भी इस आयु में अपनी माता के कटु वचन को सहन नहीं कर पाए और यहां आ गए। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि असली क्षत्रिय मान हानि सहन नहीं कर सकते, और जिनके रगों में क्षत्रिय भाव का संचार होता है वो कभी युद्ध से पलायन नहीं करते। तो जैसे कलयुग में ये वास्तविक क्षत्रिय प्राप्त होना बहुत कठिन है। वियतनाम का युद्ध चल रहा था और हमारे एक भक्त जो बाद में सन्यासी बने, उस समय कहते थे वो कॉलेज में थे, युद्ध के प्रति कोई प्रीति नहीं थी, फिर भी जबरदस्ती उनको भेज दिया गया। तो हम कोई क्षत्रिय नहीं थे लेकिन फिर भी हमको क्षत्रिय के काम में भेज दिया। तो बेचारे इतने घबराए हुए थे कि बंदूक लेते हुए भी बंदूक को देख के डरते थे, बंदूक को हाथ में रख के उनका हाथ थरथर कांपता था। तो अचानक गोलियां चलने लगी, घबरा गए, और देखते देखते उनका मित्र बगल में था, उनको गोली लगी, वो नीचे गिर गया। तो उसने तुरंत अपने आप को बचाव करने के लिए मित्र के शव को, मृत शरीर को उठाकर अपने सामने रख लिया, जिससे कि अगली गोली लगे तो मुझे नहीं लगे, और धीरे धीरे उस मृत शरीर को लेके आकर अपने कैंप में आ गए। लेकिन मजे की बात यह थी कि जब अपने कैंप में पहुंचे तो पता पड़ा तो उनका मित्र मरा नहीं था, जीवित था। तो सरकार ने उनको, मित्र को जान पे खेल के युद्ध भूमि से बचाने के लिए पुरस्कार दिया, वीरता पुरस्कार प्राप्त हुआ। और बोले मैं जब मेडल लेकर सब लोग तालियां बजा रहे थे, अंदर ही अंदर मुझे आत्मग्लानी हो रही थी कि बेटा तूने इसलिए नहीं बचाया था। कायर नंबर एक था, बचने के लिए किस तरह से उसको कवच बना के लेके भागा था, कैसे बच गया वो भगवान ही जाने। लेकिन बाद में वो भक्त बन गए, सन्यासी बन गए, तो ये सब पर्दाफाश करने में उनको कोई समस्या नहीं थी। तो यहां पर अहो तेजक क्षत्रियाणाम, जो वास्तविक क्षत्रिय होते हैं उनका तेज बड़ा प्रभावशाली होता है, और इसीलिए ये ध्रुव महाराज उस तरह का प्रताप व्यक्त कर रहे थे 5 वर्ष की आयु में ही। तो अब नारद मुनि जी ध्रुव महाराज को कुछ परीक्षा देते हैं और वो कहते हैं नाधुनापि अवमानम ते सम्मानम वापि पुत्र का लक्ष्याम कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। तो अब नारद मुनि ध्रुव महाराज को एक एक करके परीक्षाएं लेंगे। तो सर्वप्रथम कहते हैं बेटा तुम तो छोटे से बालक हो, अरे छोटे से बालक को मान अपमान इत्यादि की कोई भावना नहीं होती। तो सुरुचि ने कुछ 2 शब्द क्या कह दिए, इतना मान हानि होगा कि आप वन में आ गए? नहीं नहीं, ये अनुचित है, आप छोटे से बच्चे हो, जाओ घर पे चले जाओ। तो ये प्रभुपाद जी लिखते हैं चाइल्ड डज नॉट टेक ऑनर एंड इंसल्ट सीरियसली। तो नारद मुनि अब परीक्षा ले रहे हैं कि छोटा सा बच्चा हो तुम, इसलिए यहां पर आना उचित नहीं। फिर आगे कहते हैं कि यदि आप अपने आप को छोटा बच्चा नहीं कोई प्रगतिशील व्यक्ति मानते हो, बुद्धिमान व्यक्ति, तो आगे कहते हैं विकल्पे विद्यमाने पी नहीं असंतोष है तव। अगर मान लो ध्रुव महाराज कहते मैं दिखता छोटा हूं लेकिन वास्तव में मेरी मस्तिष्क बहुत प्रगतिशील है, तो कहते हैं कि यदि आप बुद्धिमान हो तो आप समझोगे कि जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार। इफ यू आर अ चाइल्ड, इफ यू आर इमेच्योर, यू वॉन्ट टेक इंसल्ट सीरियसली। इफ यू आर मेच्योर, यू विल नो ऑल एक्शंस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ प्रीवियस रिएक्शंस। अर्थात आप समझ जाओगे कि जो सुरुचि ने दुर्वचन कहे वो भी आपके पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण ही होगा। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर वर्णन आ रहा है कि जो हमारे जीवन में मान सम्मान अपमान हानि लाभ इत्यादि होता है, ये नहीं समझना चाहिए कि इस जीवन काल के प्रयास का ही वो परिणाम है। उसमें पूर्व जन्म के कोटि कोटि प्रयास समाहित हैं। इसलिए कर्म का सिद्धांत बड़ा ही गहन है। कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, ये कर्म अकर्म विकर्म इत्यादि हमारे जीवन में किस तरह प्रभाव करते हैं इसको समझना बहुत कठिन है। समझने का प्रयास मत करो, बस इतना जानो कि वास्तव में पूर्व जन्म के कर्म इस जीवन काल में कार्यशील हैं, और अब मैं इस समय जो कार्य करूंगा मेरे भविष्य के जीवन का वो रचना करेंगे। जैसे हमारे मंदिर में एक भक्त आते थे जब कॉलेज में थे, तो कहते थे कि मैं संडे फीस्ट में इतना भूखा रहता था, संडे फीस्ट लाइन में खड़ा रहता था, पेट में चूहे कूदते रहते थे, और जब संडे फीस्ट का प्रसाद लेने के लिए प्लेट उठाता तो मेरे मन में बस यही भावना होती कि बस प्लेट में क्या गिर रहा है। और कभी 2 साल में जब मंदिर में आया, नेत्र उठाकर देखा नहीं कि सर्विंग कौन कर रहा है, बस प्लेट में बस नजर रहती थी, हां चावल गिर गया, दाल गिर गया, भाजी गिर गई, दृष्टि केवल नीचे ही रहती थी कि क्या आ रहा है, क्या गिर रहा है। केवल एक ही बार मैं ऊपर देखता जब अपेक्षित कोई वस्तु प्लेट में नहीं गिरती, कोई हलवा इतना सा डाल देता, तब मैं ऊपर देखता कौन नालायक है देखने रहा है जो मुझे हलवा नहीं दे रहा है। तो जब तक हम अपने जीवन के प्लेट पर नाना प्रकार से वस्तुएं प्राप्त करते रहते हैं तब तक हमको लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ही हमारी योजनाओं के प्लेट में कोई एक आइटम बराबर टाइम पर समय पर अपेक्षित मात्रा में नहीं गिरता, तुरंत हमारे मन में विचार उठता है ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऊपर वाला हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसलिए ये कर्म के सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भौतिक जगत में आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक क्लेश निरंतर आते रहेंगे, इसीलिए कहीं पर मैंने पहले वर्णन किया गीता में भगवान ये नहीं कहते कि क्लेश से मुक्त हो जाओगे, नहीं, क्लेश आएंगे। तो नारद मुनि ध्रुव को कह रहे हैं आप जानते नहीं क्या, पूर्व जन्म के कारण, पूर्व जन्म के कर्म के कारण क्लेश आते हैं। जैसे प्रभुपाद एक बार मेक्सिको में थे और उनका एक सेवक उनका मालिश कर रहा था और अचानक बहुत सारे मच्छर उसको काटने लगे, तो मच्छर काटने लगे तो देखा कि प्रभुपाद के ऊपर मच्छर नहीं बैठ रहे, तो सेवक प्रभुपाद को कहता है प्रभुपाद जी मच्छर मुझे काट रहे हैं लेकिन आपको नहीं काट रहे हैं, मुझे लगता है कि आप शुद्ध भक्त हो इसलिए आपको नहीं काट रहे। प्रभुपाद ने कहा हो सकता है लेकिन कलकत्ता के मच्छर भेदभाव नहीं करते। तो 3C एल्बर्ट रोड में प्रभुपाद प्रवचन के लिए एक दिन बैठे थे, सत्य घटना है, और वो कथा करने के लिए राधा माधव गए और अचानक सर के ऊपर इतने मच्छर घूमने लगे तो प्रभुपाद आसन त्याग कर नीचे आ गए और फिर मच्छरों को देख के प्रभुपाद ने कहा देखो भौतिक जगत कैसा है, मच्छरों ने हमको सिंहासन से नीचे उतार दिया, ये हमारी शक्ति है। मायापुर में एक और भक्त प्रभुपाद का मालिश कर रहे थे और मायापुर के मच्छर तो बाकी मच्छरों से और शक्तिशाली होते हैं क्योंकि मायापुर में है महाप्रभु की कृपा पाए हैं, इतने बड़े बड़े उनके डंक मारने की शैली होती है कि जींस पैंट को भी भेद देते हैं। तो ये भक्त को ऐसा बुरी तरह काट रहा था और भक्त सोच रहा था अभी अभी मायापुर में आके सुना कि मायापुर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मायापुर आध्यात्मिक जगत है और ऐसा हाल हो रहा है, लहूलुहान हो रहा हूं। तो उन्होंने प्रभुपाद को पूछा प्रभुपाद क्या भगवत धाम में भी मच्छर होते हैं क्या, तो प्रभुपाद ने कहा होते भी होंगे तो सब हरे कृष्ण जपते रहेंगे, आपको काटेंगे नहीं, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसलिए ये भौतिक जगत हर प्रकार से दुख देगा क्योंकि जब तक भौतिक शरीर है और मन है दुख से हम बच नहीं सकते, लेकिन ये दुख क्यों आते हैं इसको समझने के लिए कर्म के सिद्धांत आवश्यक हैं। जैसे यहां पे प्रभुपाद लिखते हैं रियल कॉज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इज वंस इग्नोरेंस इन द माइंड, जो अज्ञान है इस कारणवश हम लोग इस दुख के कारण को समझ नहीं पाते। आगे कहते हैं नारद मुनि जी ध्रुव को, तो इसलिए बेटा आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने रवैये को बदल दो। तो कहते हैं परितुष्ये ततस्तात तावन मात्रेण यावत, आप संतुष्ट हो जाओ, संतोष की भावना को मन में पालो और पोसो। तो भागवत में वर्णन आता है कि मन जब असंतुष्ट होता है तो इस असंतोष से बचने के लिए संतोष को धारण करना आवश्यक है। तो इसका उदाहरण दिया जाता है कि जैसे पग को नाना प्रकार के कंटकों से और पत्थरों से बचने के लिए हम कोई जूता पहन लेते हैं, तो जूता के आवरण को धारण करने पर हम कांटे के प्रभाव से बच जाते हैं, वैसे ही ये संतोष रूपी जूता जब हम मन के ऊपर पहन लें तब नाना प्रकार के जीवन की विकट परिस्थितियों से चलते हुए भी हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो ये श्रीमद् भागवत में बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया गया है, दैवोपसादितम यावत वीक्षेश्वर गतिम बुध। तो ये संतोष हम अपने जीवन में उतारें, इस तरह नारद मुनि ध्रुव को कह रहे हैं। अब आगे वो कहते हैं कि अब तक आपकी आयु कम थी, आपका ज्ञान कम था, आपका रवैया अनुचित था। ये तीन बातें वो कह रहे हैं इन तीन श्लोकों में। अब वो ध्रुव महाराज के जो भक्ति का प्रयास है उसको शिथिल करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं अथ मात्रोपदिष्टेन योगेना वरसुत्ससी यत् प्रसादम सवै पुंसाम दुराराध्यम मतो मम। अरे ध्रुव, तुम ये भगवान श्री विष्णु को संतुष्ट करने के लिए जो निकले हो ये प्रयास इतना आसान नहीं है, ये भक्ति का मार्ग बड़ा जटिल है। दुराराध्यम मतो मम, ये भगवान को संतुष्ट करना बहुत कठिन कार्य है, मैं जानता हूं, मुझे बहुत अनुभव है। तो नारद मुनि अब ध्रुव महाराज के प्रयास को रोकने का इस तरह से वचन कह रहे हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं यहां पर तात्पर्य में, भक्ति योगा इज साइमल्टेनियसली डिफिकल्ट एंड इजी। भक्ति योग का प्रयास है ये आसान भी है और कठिन भी है। और क्यों? फॉर अ सिंसियर पर्सन डिवोशनल सर्विस इज वेरी इजी। कोई प्रामाणिक रूप से प्रयास करे तो भक्ति बहुत आसान है, और यदि प्रामाणिक रूप से हम कार्यशील न हो तो यही भक्ति का कार्य बड़ा कठिन हो जाता है। तो कई बार हम लोग भक्ति आरंभ करते तो हमको लगता है ये मैं कार्य कर पाऊंगा कि नहीं, इतना आसान है या कठिन है, क्या है। जैसे मैं जब आईआईटी में प्रचार करता था तो वहां मेरे कुछ मित्र भक्ति में आने के लिए तैयार हुए तो एक व्यक्ति को मैं प्रचार कर करके परेशान हो गया। वो हॉस्टल 7 में एक लड़का था और उसको हम कितना प्रयास करने पर भी वो एक माला के ऊपर जप नहीं किए, एक माला कर कर के बस परेशान। मैं कहता था चार माला करो, चार माला करो, बोला करेंगे करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, हुआ नहीं, पास आउट हो गए। और फिर मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट चला गया। पिछले साल जब मैं अमेरिका गया लगुना बीच, और लगुना बीच में हम लोग कीर्तन कर रहे थे, और लगुना बीच इतना सुंदर सुरम्य स्थान पर है, बीच के बिल्कुल कोने पर, पैसिफिक ओशन सीधा यहां से दिखता है, प्रशांत महासागर, नाम प्रशांत है, हमेशा रहता है अशांत। और वहां से देखो तो लगता है बस वहां जाकर किताब वितरण करो, बुक्स बेचो और कीर्तन करो। और इतना सुंदर स्थान पर है कि पूरे मंदिर में केवल एक ही ब्रह्मचारी है। कई लोग मंदिर में आके ज्वाइन हुए, कीर्तन करते हुए निकले लेकिन लौट के नहीं आए, किताब बेचने के लिए गए लेकिन बेचते बेचते उनके साथ ही निकल गए। तो बड़ा ही सुंदर जगह है, माया का परिवेश वहां पर, लेकिन वहां पर ये व्यक्ति मुझे मिल गए जो 15 साल पहले आईआईटी में मिले थे। और वो आके मुझे कहने लगे आप मुझे पहचाने क्या? मैंने कहा नहीं पहचाना। बोले आप आते थे मेरे कमरे में प्रचार करने, मुझे आप बुक देते थे और कहते थे जपो नाम जपो। तो मैंने कहा कुछ कुछ याद आ रहा है। उसने कहा मैं एक माला जपता था, याद है? मैंने कहा अरे वो कैसे भूल सकता हूं, आपने तो जीवन में बहुत साक्षात्कार दिए मुझे। तो वो कहने लगा आप मुझे कहते थे भौतिक जगत दुख है दुख है, मुझे लगता था ये अमेरिका नहीं गया इसलिए कह रहा है। लेकिन अमेरिका में आकर एमएस प्रोग्राम चालू किया तो समझने लगा जीवन में दुख है। फिर पीएचडी करने लगा तो और दुख देखने लगा। फिर नौकरी करने लगा समझ गया भौतिक जगत दुखालय अवश्य ही है। फिर जो कुछ कमी थी वो विवाह के बाद पूरी हो गई। तो पूरा साक्षात्कार के साथ मैं भक्ति करना आरंभ किया और पिछले वर्ष मुझे यहां पर दीक्षा मिल गई, मेरा नाम सख्य प्रेमदास हो गया। मैंने कहा कमाल है, 1992 में आपको प्रसाद देता था, 2007 में दीक्षा हुई, कभी कभी प्रसाद को 15 साल लगता है पहुंचने के लिए। लेकिन उस समय जो प्रचार हुआ धीरे धीरे करके उस व्यक्ति के जीवन में कुछ तो परिवर्तन हुआ है। तो इसलिए हो सकता है अभी हमको लगे ये भक्ति बड़ा कठिन है, लोग लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन कभी ना कभी वो अपने जीवन में उतारेंगे ही और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जब झांसी में थे तो अन्य लोगों की सुगम यात्रा इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स बेचते थे। उस समय उन्होंने एक ही छोटी बुक लिखी थी तो उनके मित्र को उन्होंने दिया बुक। मित्र ने पूछा ये बुक पढ़ के क्या मिलेगा, तो प्रभुपाद ने कहा ये बुक पढ़कर आप गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हो, भगवत धाम जा सकते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा भगवत धाम जाके मैं वापस झांसी आ सकता हूं क्या? तो प्रभुपाद ने कहा वहां जाकर झांसी क्यों आना चाहते? बोलो नहीं नहीं मुझे झांसी से बड़ा प्रेम है। तो प्रभुपाद ने कहा वापस नहीं आ सकते? तो बोला नहीं चाहिए मुझे बुक। तो ऐसे ऐसे लोगों को प्रभुपाद उस समय प्रचार करने का प्रयास किए। लेकिन वही प्रभुपाद जब अमेरिका में गए, यहां इस श्लोक में वर्णन आ रहा है कि दुराराध्यम, दुराराध्यम अर्थात जिनको प्रचार करना और जिनको अपने जीवन में उतारना बड़ा कठिन है, ऐसे लोग जो वैदिक सभ्यता और संस्कृति के विषय में कुछ नहीं जानते थे, वो लोग इसको अपने जीवन में स्वीकार कर लिए। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद की वाणी में उनको श्रद्धा थी, श्रील प्रभुपाद की वाणी पे उनको श्रद्धा थी, इसलिए वो इसको अपने जीवन में उतार सके। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि यदि हम प्रामाणिक रूप से भक्ति करेंगे, फॉर अ सिंसियर पर्सन डिवोशनल सर्विस इज वेरी इजी, प्रभुपाद कहते हैं। तो आगे वो कहते हैं अंत में उनका प्रयास शिथिल करने के लिए कि अरे ध्रुव, तुझ जैसे कई लोग बड़े बड़े अभिलाषा लेकर वन में आए। मुनय पदवीं यस्य निसंगेन उरुजन्म भी न विदुर मृगयंत्योपि तीव्र योग समाधिना। आप प्रथम व्यक्ति नहीं हो जो यहां आए हो। अरे कई कई लोग हैं जो अपने मन में दृढ़ संकल्प लेके आए कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे, इंद्रियों को समाहित करेंगे, श्रद्धा पूर्वक वैराग्य धारण करके वो भगवत पथ पे निकले। लेकिन इतनी अड़चने बाधाएं आती हैं कि विरले है जीव सफलता प्राप्त कर पाता है। तीव्र योग समाधिना, अरे समाधि स्थित ऐसे कई कई ऋषि मुनिगण इस पद से च्युत हो गए, तुम तो नन्हे से बालक हो। तो यह है बड़ा ही महत्वपूर्ण उक्ति नारद मुनि ध्रुव को कह रहे हैं। और प्रत्येक साधक के मन में यह भय लगा रहता है कि भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते कुछ हो गया तो क्या होगा, और लोग घबराते हैं इस बात से। जैसे जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में गए तो एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर प्रभुपाद को आके कहने लगा कि आप भारत के सन्यासी हो, अमेरिका में क्यों आए हो? तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम भी भारत के रिपोर्टर हो, तुम भी इंडियन बॉडीड हो, तुम अमेरिका में क्यों आए हो? तो वो कहने लगा फॉर हायर प्रॉस्पेक्ट्स। तो प्रभुपाद ने कहा मी टू, मैं भी इसलिए आया हूं हायर प्रॉस्पेक्ट्स, क्योंकि भारत में इतने युवा पीढ़ी हैं, उनको हम प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, वो स्वीकार नहीं कर रहे, केवल भौतिक उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यहां कम से कम पाश्चात्य देश के लोग इस मार्ग को अपनाने के लिए तैयार हैं। इसको देखकर श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार किए और तब इतने सारे लोग भारत में आकर भक्त बन गए। प्रभुपाद जी जुहू के टेरेस पर बैठकर कुछ लोगों से भेंट कर रहे थे तो बहुत बड़े उद्योगपति ब्रजरतन मोहता आए और प्रभुपाद कहने लगे ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं ब्रजरतन मोहता। तो मोहता जी कहने लगे प्रभुपाद जी हम क्या बिजनेसमैन हैं, असली बिजनेसमैन तो आप हो। 40 रुपए लेके गए अमेरिका, अब 40 करोड़ की संपत्ति पूरे विश्वभर में आपकी है, असली बिजनेसमैन आप हो। प्रभुपाद ने कहा तो ऐसा करते हैं आप भी हमारे बिजनेस में आ जाओ। तो ये सुन के मोहता जी घबरा गए, बोले अभी नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, कम से कम हमारे कृष्ण भावना आंदोलन के प्रचार कार्य में सहायता करो। तो इसलिए हम आप सबसे यही निवेदन करते हैं, जितने इस्कॉन के यहां पर मित्रगण सदस्यगण आए हैं, जो अलग अलग रूप से हमारे इस कार्यकलापों में जुड़े हुए हैं, कि आप येन केन प्रकारेण इन मंदिर के गतिविधियों से जुड़ जाइए और देखते ही देखते आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। नारद मुनि ध्रुव महाराज को कह रहे हैं, अतो निवर्तताम एष निर्बंधस्तप निष्फल यतिष्यति भवान काले श्रेयसाम समुपस्थिते। और ये सबसे जो अधिक सर्वाधिक सुनने में जो बात आती है वो नारद मुनि कह रहे हैं, अतो निवर्तता मेष बेटा ध्रुव, ये भक्ति करने की उम्र नहीं है तुम्हारी, अब ये आयु नहीं है भक्ति करने की। अतो निवर्तताम एव, घर चले जाओ, निर्बंधस्तव निष्फल, जब तक जीवन में अलग अलग अनुभव नहीं करोगे इंद्र तृप्ति के, तब तक आपका मन आपको नाना प्रकार से विचलित करेगा। तो इसलिए लोग कहते हैं जवानी में भक्ति नहीं करनी चाहिए, वो एक समय आएगा जब भक्ति करें। जैसे यहां पर राधेश्याम प्रभु इस्कॉन यूथ फोरम जो इतना जबरदस्त चला रहे हैं, पूरे भारत भर से लोग आते हैं यहां पर ट्रेन होने के लिए, लेकिन वो जब ब्रह्मचारी बनने के लिए ज्वाइन हुए तो उनकी बहन उनसे कहने लगी कि ऐसा करो कि इस जीवन काल में आप परिवार की अच्छी तरह देखभाल करो गृहस्थ बन के, अगले जीवन में ब्रह्मचारी बन जाना। तो उन्होंने कहा पिछले जीवन में मैंने यही कहा था और उसका मैं अब पूर्ण यहां पे इस जीवन में करना चाहूंगा। तो क्योंकि उन्होंने उचित समय पर देखिए भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन दान दिया, तो इस कारण उन्होंने पूरे विश्व को परिवार के रूप में स्वीकार किया और उसके कारण हजारों की संख्या में युवा पीढ़ी उनके इस बलिदान का लाभ ले रही है। तो हमको चाहिए कि हम समझें कि कोई युवावस्था में भक्ति में आगे बढ़ता है तो हमको उसको रोकना नहीं चाहिए। और हम देखते हैं आजकल, कई बार मैंने देखा है कि कोई जवान लड़का बेचारा मंदिर आने लगता है तो उसके घर वाले कहते बेटा मत जा खतरनाक है ये, वो सिगरेट पिएगा तो लोग कहेंगे कि भैया कम से कम फिल्टर वाला पी ले, दारू पिएगा तो लोग कहेंगे देसी मत पीना, लेकिन हरे कृष्ण मंदिर में गए बोले अरे बड़ा खतरनाक जगह है, हमेशा के लिए जीवन बदल जाएगा। तो जैसे एक हमारे रसराज प्रभु किसी को प्रचार करते थे तो लड़का आके मंदिर में ज्वाइन हो गया तो उनके पिताजी आके बोलने लगे ये क्या, ये कोई आयु है क्या मंदिर में आने की, जब वो मेरे आयु के हो जाएगा तब उसको मंदिर में आना चाहिए। तो रसराज प्रभु बोले ठीक है लड़के को छोड़ देते आप आ जाइए मंदिर में, आप इसी आयु के हो। तो बोले जरा घर पे पूछना होगा मुझे, तो घर पे गए अगले दिन आए और बोले बच्चे को रहने दो कोई बात नहीं। गिरिराज महाराज जब ज्वाइन हो गए तो उस समय उनके माता पिता मनोचिकित्सक के पास लेके गए उनको, साइकेट्रिस्ट के पास, और साइकेट्रिस्ट को पूछने लगे यू हैव एनी प्रॉब्लम इन लाइफ, वो बोले हाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। वो साइकेट्रिस्ट घबरा गया, बोले माता पिता के साथ कुछ प्रॉब्लम था क्या, बोला हाँ पितामह से जगता माता धाता पितामह, हर प्रश्न का उत्तर गीता के श्लोक से। साइकेट्रिस्ट भागे भागे बाहर निकला आधे घंटे में, माता पिता को बोले आपके लड़के के साथ आधा घंटा और रहूंगा मैं हरे कृष्णा बन जाऊंगा। और प्रभुपाद ने कहा साइकेट्रिस्ट ने कहा कि योर सन इज परमानेंटली इन्फेक्टेड। तो मैं जब मंदिर में ज्वाइन हुआ तो मेरे माता पिता ने किसी रिश्तेदार को बताया नहीं ये क्या कर रहा है। रिश्तेदार पूछते थे लड़का कहां गया, बोला हाँ बंबई में है। करता क्या है बंबई में है, करता क्या है घूम रहा है बंबई में। तो फिर कुछ समय के बाद आत्मा सीरियल में जब चालू हो गया तो मेरा एक कजिन चेन्नई में प्रोग्राम देख रहा था तो मेरा चेहरा ऊपर आया और ऐसा अपना बैठकर वो अपना चैनल घुमा रहा था, चैनल घुमाते घुमाते अचानक देखा हुआ चेहरा लगा उसको, तुरंत वापस खींचा और देखा अरे हेयर स्टाइल अलग लग रहा है लेकिन आदमी तो वही है। तुरंत घर पे फोन लगाया, मेरी माँ ने फोन उठाया बोला ये जरा चैनल लगाओ, तो बोला लगाया कौन है, बोला हाँ वही है। तो वही है आपने बताया नहीं कभी हमको, अरे क्या बताएंगे भाई ये कोई बताने वाली बात है क्या। तो बाद में मेरी मां मेरे को बोलती है भक्ति करना है तो अंदर बैठ के किया कर, दुनिया के सामने क्यों आता है। इतना अच्छा केश भगवान ने दिया था सब निकाल कर, कैसा भूत जैसा दिखता है देखो। तो कई बार लोगों को लगता है हरे कृष्ण आंदोलन अर्थात हरे कृष्ण कट मिल जाएगा, तो लोग घबराते हैं। जैसे हरे कृष्ण भक्तों को पकड़कर जेल में डाल दिया ऑस्ट्रेलिया में, तो मधुद्विज प्रभु ने प्रभुपाद को लेटर लिखा और कहा कि लॉयर हजारों डॉलर मांग रहा है हमको बाहर निकालने के लिए। प्रभुपाद ने कहा लॉयर को कोई फीस मत दो, जो लोग जेल में गए हैं सब लोग कीर्तन स्टार्ट कर दो। तो जितना जेल में था वो लोग ने कीर्तन जोर जोर से स्टार्ट करना आरंभ कर दिया और सब जितने वहां पर कैदी थे उनको प्रचार करना आरंभ कर दिया। कैदी लोग में सब लोग नाम जपने लगे और यहां तक कि जितने पुलिस के गार्ड थे वो लोग भी हरि बोल बोलने लगे। तो जब पुलिस के वहां पर अधिकारी लोग आए तो देखे ये तो बड़ा खतरनाक लोग है, तो तुरंत जज ने उनको हुक्म निकाल दिया कि ये हरे कृष्ण वाले जेल के अंदर ज्यादा खतरनाक है जेल के बाहर से, इसलिए इनको छोड़ देना ही अच्छा है। तो इसीलिए ये महामंत्र के प्रभाव से परिवर्तन होता है, इस बात में कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं। लेकिन लोगों को यह देखकर घबराना नहीं चाहिए कि इससे जीवन परिवर्तन हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता। लोग कहते सब लोग साधु बन जाएंगे तो जीवन का, लोगों का क्या होगा, जगत का क्या होगा, अगर सब लोग डॉक्टर बन गए तो पेशेंट कौन बनेगा, सब लोग लॉयर बन गए तो फिर केस कौन लड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि सब लोग एक दिशा में चले जाएंगे, कुछ लोग हैं जो इस दिशा में आ जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग गृहस्थ रहकर गृहस्थी में ही अपना जीवन बिताएंगे। और यहां पूना में ही लगभग 2000-3000 की संख्या में भक्तगण हैं जो अपने घरों में भगवान के विग्रह स्थापित करके गृहस्थी जीवन अपनाए हैं। तो यहां पर नारद मुनि बहुत ही, जो पुराना एक भ्रांत धारणा है उसका प्रतिपादन कर रहे हैं कि भक्ति करना हो तो वृद्धावस्था में, जवानी में नहीं। इसलिए ओल्ड OLD को कहते हैं, ऐसा समय आ जाए कि हृदय में केवल ओनली लव एंड डिवोशन, ओनली लव एंड डिवोशन OLD, और भक्ति नहीं करेंगे तो बचेगा ओनली लस्टी डिजायर्स, केवल नाना प्रकार के काम वासनाएं। इसलिए भक्ति करना हो तो अभी हमको आरंभ करना चाहिए। और ये हरे कृष्ण महामंत्र इसलिए हमको दिया गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हमारे सुदामा प्रभु का प्रसिद्ध उदाहरण है कि मृत्यु के समय पता नहीं किस अवस्था में होंगे और कहां ICU में एडमिट होंगे, लेकिन जब हम लोग ICU में होंगे तब यमदूत भी ऊपर से देखते रहेंगे, ICU हम आपको देख रहे हैं और किसी भी क्षण आकर लेके जा सकते हैं। तो उस समय मुख में भगवान की वाणी नहीं आएगी। तो इसलिए यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं, यूथ इज फॉर एंजॉयमेंट, ओल्ड एज इज फॉर भक्ति, दिस इज अ टिपिकल मिसकंसेप्शन, ऐसा नहीं है। तो किसी भी समय आपको यदि अवसर प्राप्त हो तो भगवान की भक्ति आरंभ करनी चाहिए। तो अब नारद मुनि के इस वाणी को सुनकर ध्रुव महाराज क्या उत्तर देते हैं और ध्रुव महाराज किस तरह से नारद मुनि के साथ आदान प्रदान करते हैं और तत्पश्चात नारद मुनि किस तरह का ज्ञान उनको संचार करते हैं, इसके विषय में हम लोग और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कल के दिन संध्याकालीन 7 बजे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की